ஓம் ஜய ஜகதீஸ ஹரே. ஓ சுவாமி ஜய ஜகதீஸ ஹரே. பக்த ஜனோகே சங்கட தாஸ ஜனோகே சங்கட க்ஷண மே தூர கரே. ஓம் ஜய ஜகதீஸ ஹரே. ஜோ தியாவே ஃபல பாவே துக்க விநாசே
ஆ यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजादिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वेष्णाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपतमयं समन्प्रियाय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तादापरात् पृथिवी सुमन्पर्यन्ताया एकराटिति तदपैसे श्लोको विगितो मरुतः परदिष्टारो मृतशापसन्नगृहे आविक्तस्य कामा प्रविश्वे देवाः सभा सद इति ॐ विश्वतः सुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वास्तम् बाहुभ्याम् दम्पति सम्पत्रीरधावा भूमिजन्नन्य देव एकः सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे विल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभि त्वम् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः यथा लब्धोपचार मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि भूस्यावर रामचन्द्र की जय मोर्मुकुटवंशी वाले की जय बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोली श्री वेद व्यास जी महाराज की जय बोली श्री परीक्षित जी महाराज की जय बोली श्री सुखदेव जी महाराज की
वाह श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
Oh.
देवव्यास जी महाराज की
जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की
जय।
श्री परीक्षित महाराज की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधाव वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्य निधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं सम्पद्यजहत्यजामनुषयी सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयम् ध्यायेदजस्रं हरिं योऽन् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन् निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तर्हिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्दघन्नानन्दकन्द भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक समस्त सज्जनों एवं माताओं बहनों को सादर यथा योग्य अभिवादन कर ध्रुवोपाख्यान के पश्चात की कथा का आज शुभारंभ कर रहे हैं। चौथा स्कंद है ये विसर्ग स्कंद कहलाता है। विसर्ग का अर्थ बताया है, विसर्ग है पौरुष है स्मृत है। विसर्ग माने भगवान के बनाए हुए सर्ग में सृष्टि में जीव का जो परम पुरुषार्थमय सृष्टि का स्वरूप है वो विशिष्ट सर्ग विसर्ग कहलाता है। ब्राह्मणो गुण वैषम्यात विसर्ग पौरुष स्मृत है। तो जीव का इस सृष्टि में सबसे बड़ा काम क्या है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो सबसे पहला काम धर्म का होता है और अंतिम प्रयोजन मोक्ष का होता है। अर्थ और काम या काम और अर्थ ये अवांतर है। ये अर्थ और काम ये हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए अर्थ और काम को बीच में रखा है। मुख्यता से धर्म और मोक्ष को पकड़ा है। तो चौथे स्कंद में प्रारंभ के 7 अध्याय हैं। वो 7 अध्याय धर्म प्रधान अध्याय है। भगवान शंकर अपने धर्म में रहे और जो धर्म में नहीं रहा उसकी क्या दशा हुई, दक्ष प्रजापति का यज्ञ जैसा कर्म भी उसके काम नहीं आया, वो धर्म नहीं हुआ। ऐसे ही सती का पति आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म था, परंतु पारिवारिक मोह जो कि उनका धर्म नहीं था उस मोह के कारण से धर्म का त्याग किया, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती को सती होना पड़ा। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये 7 अध्याय क्यों दिए, ये यहां यज्ञ का प्रसंग चल रहा था और यज्ञ होते हैं वो सप्त तंतु प्रधान होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यज्ञ है ये 7 बड़े यज्ञ कहलाते हैं, इसलिए 7 अध्याय इसमें दिए गए। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, क्रिया का सुंदर स्वरूप है ये धर्म का स्वरूप नहीं है। क्रिया भी अच्छी हो और उसमें भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। भगवान शंकर ने धर्म में स्थित होकर दक्ष प्रजापति को जब शिक्षा दी, उसका यज्ञ समाप्त किया और ब्रह्मा और देवता सब जाकर भगवान शंकर से क्षमा याचना किए, ये धर्म था उनका, तो फिर भगवान शंकर उस यज्ञ में पधारे और दक्ष प्रजापति को जीवित किया, उसके बकरे का मुख लगाया और उसको अपने गोद में रखा। दक्ष प्रजापति को होश आया और उस दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की, धर्म बना। क्षमा याचना ही नहीं की, अपने अंदर का सब राग द्वेष जो मैल था वो मैल साफ कर दिया और भगवान शंकर के द्वारा दिया गया दंड उसको अच्छा लगा। तो इसका प्रतिफल क्या हुआ कि बिना बुलाए भगवान वहां प्रकट हो गए थे और उन भगवान ने फिर सबको ये चेतावनी दी कि हमारे ही स्वरूपों में भेद उपासना उचित नहीं है। ऐसे करके भगवान ने शिक्षा दी, ये धर्माध्याय हुआ। अब आगे ध्रुव जी का चरित्र चला, तो ध्रुव जी का देखो भागवत में जो है जितने प्रसंग आए हैं ये श्रृंखलाबद्ध है। श्रृंखलाबद्ध माने जैसे साकल है, साकल में एक एक कड़ी एक एक से जुड़ी रहती है, ऐसे भागवत में हर प्रसंग से पहले ये क्यों आया इसका उत्तर मिलेगा। ध्रुव का नाम तो तीसरे स्कंद में पहले भी आ गया था, पर यहां जो है वर्णन नहीं आया, चौथे स्कंद में ही आया। और चौथे स्कंद में भी देखो किस ढंग से आया कि पहले शिव चरित्र आया, उसके बाद ध्रुव का उपाख्यान है। नहीं तो देवहूति के वंश के बारे में बात चली गई थी तो उसके बाद सीधे ही कहते हैं अब हम आपको उत्तानपाद के वंश के विषय में बताते हैं, पर ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उत्तानपाद के वंश को हमें काम में कहना है। काम में ध्रुव जी महाराज के मन में कामना हुई कि मैं अपने बाप की गोद में बैठूं, तो बच्चा है उसके इच्छा हो गई, अपने छोटे भाई को बैठे देखकर उसके भी मन में इच्छा हो गई, परंतु उसको बैठने की जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कि ध्रुव जी के काम में संसार की गंध थी। ऐसा काम होता है उसमें मनुष्य असफल होता है और उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसको ताना मार दिया। तो ध्रुव जी महाराज वन में चले गए, नारद जी मिले, भगवान की उपासना की, भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने त्रिभुवन में सबसे ऊंचा पद उनको दिया। तो जो जो संसार की इच्छा से ऊपर इच्छा करने लगे, भगवान की इच्छा करने लगे, त्यों त्यों ध्रुव जी का काम दिव्य होता चला गया। ध्रुव उपाख्यान 5 अध्यायों में आता है। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें कामना होती है, होती तो खैर मन में है, और मन में भी क्या होती है, वास्तव में तो स्वयं में होती है, परंतु 5 ज्ञानेंद्रियों से विषयों का भोग होता है, इसलिए यहां पर कामना का स्वरूप देखा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं, इनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां, इनमें काम का रूप देखा जाता है, इसलिए 5 अध्याय बताए। अब आगे महाराज पृथु का चरित्र चलेगा, तो पृथु के चरित्र में 11 अध्याय आते हैं। 11 अध्याय क्यों आते हैं कि हमारे पास में ये है अर्थ का अध्याय, 11 अध्याय अर्थ के अध्याय है। अर्थ माने पदार्थ वगैरह काम में लेना, पदार्थों का उपभोग करना, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, तो ये अर्थाध्याय है। और इन अर्था ये अर्थ की प्राप्ति 5 तो ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेन्द्रियां और 1 मन 11 के द्वारा होती है, इसलिए 11 अध्याय है। और अंत में मोक्षाध्याय आएंगे, मोक्षाध्याय में 8 अध्याय आएंगे, 4 अध्याय निर्गुण के हैं, 4 अध्याय सगुण के हैं। ऐसे करके ये मोक्षाध्याय है, उसमें भी देखो प्रारंभ में 2 अध्याय सगुण के आएंगे और अंत में 2 अध्याय सगुण के आएंगे, बीच में 4 अध्याय आएंगे वो निर्गुण के आएंगे। ये भी क्यों बताया कि सगुण की प्राप्ति सरल होती है, इसलिए पहले योगादेश के द्वारा सगुण की प्राप्ति, फिर पुरंजन उपाख्यान से निर्गुण की प्राप्ति, और फिर अंत में उन प्रचेताओं के द्वारा नारद जी का सत्संग है, वो सगुण की प्राप्ति। ऐसे करके चौथा स्कंद है। इसमें देखो क्या क्या बातें होती है। तो कल जब ध्रुव जी का चरित्र चला तो फिर विदुर जी महाराज ने ये सुना कि यही ध्रुव चरित्र था जिसको नारद जी महाराज ने प्रचेताओं की सभा में गाया था। तब ये विदुर जी महाराज पूछने लगे मैत्रेय जी से कि आप ये हमको कथा सुनाओ, ये प्रचेता जगन कौन थे, ये प्रचेता कौन थे, इनके विषय में हमको बताओ। क्योंकि नारद जी महाराज का बोलना ये कोई मामूली अर्थ नहीं रखता है। नारदम देव दर्शनम। एक और गहरी बात विदुर जी महाराज प्रश्न में बोलते हैं कि नारदम देव दर्शनम, माने नारद जी हैं वो भगवान का दर्शन किए हुए हैं। तो देखो जिस महापुरुष से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन महापुरुषों के कृपा छाया में हमको तत्वबोध होता है, उन महापुरुषों के प्रति हमारे मन में ये श्रद्धा रहनी चाहिए कि ये भगवान को प्राप्त हुए हुए हैं। यदि ये श्रद्धा नहीं बनेगी तो हमें उनके वचनों पर विश्वास नहीं होगा, और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए विदुर जी महाराज ने नारदम देव दर्शनम, ये कई जगह आएगा, नारदो देव दर्शन है, नारदम ये कर्मवाचक हो गया, नारदम कर दिया। तो भगवान नारद जी महाराज भगवान के दर्शन किए हुए हैं ऐसा विदुर जी को विश्वास है। उसी विश्वास के कारण से विदुर जी महाराज उनके वचनों को और ज्यादा खुलासा करने के लिए मैत्रेय जी से पूछते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहने लगे कि देखो ध्रुव जी का मैंने तुमको चरित्र सुनाया ही था, अब ध्रुव जी का जो उत्कल नाम का एक पुत्र था, तो वो पुत्र था वो पिता के वन में चले जाने के बाद उसने राजगद्दी स्वीकार नहीं की, क्यों, वो बड़ा ज्ञानी पुरुष था, लोगों के सामने वो जड़ उन्मत्त की तरह से रहता था, परंतु वो वास्तव में बड़ा बुद्धिमान था। उस राज्य के दलदल में फंसा ही नहीं, जंगल में गया और भगवान का भजन करता था। फिर ध्रुव का दूसरा बेटा था वत्सर, वो राजा बना। फिर उनके आगे वंश चले हैं, इस वंश में आगे चलते चलते एक अंग नाम का राजा हुआ ध्रुव जी के वंश में, और वो अंग राजा सुनीता के साथ में विवाहित हुआ। सुनीता थी ये मृत्यु देवता की पुत्री थी। तो देखो विवाह करते उस समय में लड़के के कुल को और लड़की के कुल को सबको देखा जाता है, तो सुनीता का कुल क्या है ये कुल पहले तो पता चला नहीं, विवाह के बाद में फिर ये पूरी जानकारी हुई तो पता चला ये तो मृत्यु की बेटी है। पर अब क्या हो गया, सो तो हो गया। तो उस सुनीता के अंग राजा से वेन नाम का लड़का पैदा हुआ है, और वो वेन तो ऐसा हुआ जिसने सारे संसार में अत्याचार फैलाया। भागवत में तो नहीं आया ऐसा, लेकिन और जगह आता है कि राजा वेन ने हमारी बहुत सी सामाजिक रीति नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। जैसे विधवा विवाह है, ये विधवा विवाह की परंपरा राजा वेन ने निकाली थी। उससे पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, क्योंकि विधवा विवाह कैसे हो भाई, विधवा का विवाह कैसे हो, ये शास्त्र में आया कि विधवा के विवाह का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जिसकी वो बेटी थी उसने तो उसको दान में दे दिया जिसके साथ शादी की, और जिसने दान लिया वो मर गया। अब उसका दान देने का अधिकार किसको होता है? इसलिए विधवा का जो जीवन होता है वो केवल भजन करने के लिए होता है। जिस घर में विधवा होती है वो घर है, वो संत का घर कहलाती है, संत का घर कहलाता है, क्योंकि विधवा है वो भगवान के द्वारा बनाई हुई संत है। हम लोग तो जो ये कपड़े रंगते हैं हमारी मर्जी से, हमारी सुविधा से, हमारे आराम से हम लोग साधु होते हैं, हमारी मर्जी से साधु होते हैं, पर विधवा को भगवान संत बनाते हैं। इसलिए जिस घर में विधवा का आदर है उसका अर्थ है कि संत का आदर है। विधवा का ऐसा प्रभाव होता है घर में कि फिर उस घर में ज्यादा उत्सव, ज्यादा शान शौकीति और ज्यादा जो है वो तड़क भड़क के कपड़े पहनना ये सब नहीं होता। तो एक घर में विधवा बैठी है इसलिए मर्यादा के अनुसार रहो, ज्यादा शौकीनी में मत चलो, ऐसा स्वतः भाव आता था। इस राजा वेन ने विधवा का विवाह चालू किया तो कई जातियों ने नहीं माना, विधवा विवाह को कईयों ने उस समय नहीं माना, और जिन जातियों ने विधवा विवाह को मान लिया फिर वो शूद्र में ही हो गए। इसलिए सबसे बढ़िया शूद्र की व्याख्या ये बताई कि जिस जाति में नाता होता है बस वो शूद्र है। शूद्र किसको कहे कि जिसमें जो है नाता होता है, नाता होना ये शूद्र जाति ने ही स्वीकार किया था राजा वेन के सामने। आजकल समाज सुधार के नाम से विधवा विवाह की बात चलती है, बहुत गलत है, अन्याय है। कहते हैं कि फिर उसके जीवन का क्या होगा, कि भाई वो माता पिता है क्या उसका भरण पोषण नहीं कर सकते, भाई उसका भरण पोषण नहीं कर सकते, ससुराल में क्या उसका भरण पोषण नहीं कर सकते। विधवा विवाह यदि ये समाज में नियम हो गया तो कई ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाएंगे जिनका समाज के पास कोई उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधवा का विवाह हो तो यदि कोई 60-70-80 वर्ष की डोकरी विधवा हो गई उसका भी विवाह रचो, फिर कहीं वो कोई विवाह की उम्र होती, ये नहीं चलेगा। आपका शब्द क्या बोलता है कि विधवा का विवाह करो, तो विधवा का विवाह करो ये जो है वहां पर उम्र की बात थोड़ी है। और यदि उम्र को ही लेकर के सोचते हैं, यहां भी एक गलती है, देखते हैं कि स्त्री कैसे रह पाएगी क्या है, ये एक तरह से स्त्री जाति का घोर अपमान करते हैं, ये अपमान है स्त्री जाति का। क्योंकि स्त्री होती है उसमें लज्जा, संकोच, मर्यादा, भय, ये ऐसे अच्छे गुण होते हैं जिन गुणों के कारण से स्त्री का जीवन बहुत पवित्रता से निकल सकता है। मनुष्य की अपेक्षा स्त्री का जीवन बहुत स्वच्छ होता है लज्जा, संकोच, मर्यादा के कारण से। पुरुष कहीं चला जाए, कहीं आ जाए, कुछ ही बोल ले, कुछ ही खा ले, कहीं चला, स्त्री ऐसी नहीं होती, तो वो मर्यादा में रहती है, तो उसके जवानी है वो धर्म पूर्वक निकल सकती है। पुरुष उच्छृंखल होते हैं इसलिए पुरुषों के लिए अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। तो कहा कि पुरुष होता है वो दोबारा विवाह क्यों करता है जी, तो पुरुष के लिए विवाह, दोबारा विवाह करने के लिए उन्हीं पुरुषों को छूट दी है कि जिस पुरुष के कोई जो है विवाह हुआ, स्त्री हुई और कोई संतान नहीं हुई, तब वो दूसरा विवाह कर सकता है, नहीं तो उसको जो है स्त्री मरने के बाद दूसरे विवाह को बढ़िया नहीं माना है। क्योंकि पुरुष के नाम से वंश चलता है, स्त्री के नाम से वंश नहीं चलता। तो जिस पुरुष का विवाह हुआ और कोई जो है ऐसा ही दुर्योग आ गया, स्त्री मर गई, बच्चा हुआ नहीं, संतान हुआ नहीं, तो दूसरा विवाह कर सकता है। परंतु यदि संतान हो गई हो तो उसके लिए भी शास्त्र नहीं बोलता कि नहीं, उसके लिए विवाह करना उचित नहीं है। इसलिए भाई समाज की जो ये मर्यादाएं जब तक ये थी तब तक समाज में बहुत ही शांति थी, लेकिन जो जो ये चीजें आने लगी कि ये तोड़ दो और ये विधवा हुआ कर दो, ये नियम ऐसा हटा दो, ये अपने उच्छृंखलता करने लगे, तो भाई उससे जो है धर्म में बाधा पड़ी, और धर्म में बाधा पड़ने से समाज में बाधा पड़ी, और समाज से बाधा पड़ने पर राष्ट्र में बाधा पड़ी, सब मानव जाति में ही बाधा पड़ गई, सुख शांति की बाधा पड़ी। तो ये जो राजा वैन हुए थे उन्होंने बड़ा जो है पाप किया, अन्याय किया, और उस राजा वैन के शरीर से भगवान नारायण के अंश के रूप में राजा पृथु का जन्म हुआ। तब विदुर जी महाराज बोलते हैं कि महाराज ये क्या बात हुई, ये राजा वैन के ये भगवान पृथु कैसे पैदा हुए। तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि देखो, एक बार राजा अंग ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ के अंदर देवता लोग उपस्थित नहीं हुए, तो बड़े बड़े संसद पतियों ने राजा से निवेदन किया कि आपके यज्ञ में देवता लोग नहीं आ रहे, इसका कारण यह कि आपके कोई संतान नहीं है, यदि आपके संतान हो तो देवता लोग यज्ञ में आ जाएं। निसंतान होना भी दुर्भाग्य का ही चिन्ह था। तो फिर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ में आहुतियां दी, तो एक दिव्य पुरुष यज्ञ की आहुति से प्रकट हुआ, और उसने जो है एक वस्तु दी भोजन करने की, पायस, पायस बोलते हैं खीर को, सिद्ध मादाय पायसम, और उस वस्तु को रानी ने स्वीकार किया और उससे ये वैन पैदा हुए। अब ये नहीं देखना चाहिए कि इतने अच्छे विधान से किया गया था ये यज्ञ, फिर उनके ये दुष्ट राजा कैसे पैदा हुआ। देखो, संतानें होती ये प्रारब्ध के कारण से होती है, जैसा जिसका जहां भाग्य होता है वैसा ही होता है। अब जो है उसके प्रारब्ध था, और दूसरी बात ये थी कि यज्ञ तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उस यज्ञ की विधि से सिद्ध पुरुष के द्वारा उनको बढ़िया खीर भी मिल गई, पर उस वंश के अंदर सुनीता का जो संबंध हुआ राजा अंग के साथ, ये बहुत गलत था, अच्छा नहीं था कुल के अनुसार। ये ठीक नहीं था। तो अब जो है राजा अंग के ये वैन पैदा हुआ, और वो वैन बड़ा दुष्ट निकला, छोटेपन से ही राजा के पास शिकायत आने लगी, बहुत उसके विषय में शिकायतें आई। तो राजा वैन ये अंग राजा तो धाप गया, इससे तृप्त हो गया, वो रातों रात अपना राज पहल वगैरह छोड़ करके चला गया। मन में सोचा कि खराब लड़का निकला तो बहुत अच्छा हुआ, चलो अच्छा है ये अर्थाध्याय हो, इसमें जो उपलब्धि होती है वो किस लिए होती है, कैसे होती है, बताते हैं कि राजा वैन उसको उपलब्ध हुए अंग को, तो अंग ने देखा कि चलो हमारे खराब लड़का हुआ अच्छा है ये, इससे वैराग्य वाली तो मुंह पैदा होता। कदापत्यम धृषम मन्ये, कदापत्यम वरम मन्ये, कदापत्यम माने कुपुत्र, बहुत अच्छा है, आसक्ति नहीं हुई, नहीं तो मेरी आसक्ति होती, रातों रात निकल गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए कुछ पता नहीं चला। मंत्रियों ने खूब राजा को ढूंढा, राजा का पता ही नहीं चला। अब भाई राजा किसको बनाए, तो सब लोग बैठ करके विचार किए, तो भाई अब राजा तो वही इसी वैन को ही बनाना पड़ेगा, कि वैन तो साहब ये धर्मात्मा तो नहीं है, पर अब नहीं है तो नहीं है, इसको सिखाएंगे धर्म बताएंगे, या काम को काम सिखाता है, राजा के राजा बनने का काम पड़ा नहीं, अब राजा बनने का काम पड़ गया तो सीख लेगा, चलो उसको राजा बना दिया। ऐसा वो प्रतापी था, दुष्ट था, वो शासक था कि सब डाकू इधर उधर जो है वो छिप गए, परंतु उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। यहां कोई होम नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, ऐसे उसने निवारय धर्मम, धर्म का निषेध कर दिया। तब ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, उन्होंने विचार किया कि भाई ये राजा यदि धर्म के लिए लोगों को रोकेगा तो प्रजा तो वैसे ही धर्म में रुचि कम रखती है, और यदि प्रजा को धर्म के लिए रोकेगा तो प्रजा पाप करेगी, तो प्रजा पाप करेगी उसका आधा फल राजा को भोगना पड़ता है, इसलिए इसको जाकर समझाएं अपने सब लोग। और ये तो एक अयहेरेव पह पोषा है, सांप को हमने दूध पिला दिया, सांप होता है उसको दूध पिलाने से जहरी बढ़ता है, अब इसको राजा और बना दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। तो सब ऋषि मुनि ने जाकर के वेन को समझाया कि महाराज वेन भगवान के लिए यज्ञ करने की परंपरा चालू करो। भगवान कौन भगवान होता है, राजा से बढ़कर कोई भगवान होता है? नहीं नहीं नहीं, राजा ही भगवान होता है, राजा ही यमराज होता है, राजा ही विष्णु होता है, राजा ही ब्रह्मा होता है, राजा ही शिव होता है, सब कुछ राजा ही होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्व देव मयो नृप, राजा में सब देवता रहते हैं, कोई विष्णु विष्णु कुछ नहीं है, हम मानते ही नहीं भगवान को, हम मानते ही नहीं। देखो ये राजा वेन थे ना, ये बड़े नास्तिक थे, नास्तिक, भगवान को मानते ही नहीं। इसलिए सेठ जी ने कहा, सेठ जी माने जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उन्होंने कहा कि पापी का संग भले ही कर लेना पर नास्तिक का संग मत करना। हिरण्यकश्यप पापी था पर नास्तिक नहीं था, हिरण्याक्ष पापी था नास्तिक नहीं था, रावण पापी था पर नास्तिक नहीं था, कंस था वो पापी था पर नास्तिक नहीं था, शिशुपाल पापी था पर नास्तिक नहीं था। नास्तिक कौन होता है, भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। जो भगवान को नहीं मानता उसका संग करने से बड़ा भारी पाप लगता है, दोष लगता है। तो उसने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं है। ऋषि मुनियों को इतना बुरा लगा कि अरे इसके राज्य में हम रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो उन सब ऋषियों ने मिलकर ऐसा हुंकार किया। हुंकार करते ही वो तो राजा अपने आसन से गिरा और वही खत्म हो गया। अब विचार किया कि किसको राजा बनाए, तब उसके शरीर का मंथन किया, पहले उसके जांघों का मंथन किया, तो वहां से एक काला खलूटा छोटा सा नाटा सा आदमी पैदा हुआ। उसने कहा किम करोमि, मैं क्या करूं जी क्या करूं, तो कहा रे ये काला कलूटा, ये देखो राजा होता है उसको कई दृष्टि से, शरीर से भी रूप रंग वाला हो, बुद्धि से भी बुद्धिमान हो, ये सब ठीक है, लेकिन ये तो काला कलूटा छोटा ठिंगना और कोई बुद्धि भी इनकी नहीं लगती। कहा निषीद बैठ जा, तू बैठ जा। तो तब से ये निषाद पैदा हुए, निषाद, इनको जंगलों में भेज दिया, जाओ तुम जंगलों में रहो, बैठ जाओ जंगलों में रहो। तो उससे जो वंश चला वो निषादों का वंश चला, निषाद जाति वेन राजा के जंगा के मंथन करने से उत्पन्न हुए पुरुष से प्रारंभ हुई। अब उसके भुजा का मंथन किया गया, भुजा का मंथन किया तो एक भुजा का मंथन किया तो भगवान विष्णु का स्वरूप महाराज पृथु थे वो पैदा हुए उत्पन्न हुए, और दूसरी भुजा का मंथन किया तो भाई भगवती लक्ष्मी जी वो अर्ची के नाम से प्रकट हुई। पृथु और अर्ची जब दोनों साथ साथ प्रकट हो गए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही वहाँ प्रकट हो गए, तब फिर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और फूलों की वर्षा की और विचार किया अब भाई अब भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करेंगे। अब सब ने अपने अपने उपहार दिए, ब्रह्मा जी ने उनको बड़ा सुंदर ज्ञानमय कवच दिया, वो ज्ञानमय कवच एक कवच होता है लड़ाई का, इन्होंने दिया ब्रह्ममय माने ज्ञानमय कवच दिया, ये सबसे बड़ा कवच है वो, जिसके अंदर ज्ञान का कवच आ गया वो संसार के अनुकूल प्रतिकूल सब चोटों को बड़े हिम्मत के साथ सह लेता है, ज्ञान का कवच होना चाहिए। चंद्रमा ने उनको अमृतमय घोड़े दे दिए, त्वष्टा ने उनको रथ दे दिया, ऐसे ही रुद्र ने उनको बड़ा सुंदर एक तलवार दे दी, तरह तरह की चीजें उनको मिल गई। और अब आप जानते हो कि जो आदमी ऊंचे पद पर होता है उनकी खुशामद करने वाले भी बहुत होते हैं, और उन खुशामदियों से राजा का पतन भी होता है। तो राजा पृथु की ये कई ऐसे स्तावक लोग थे, खुशामदी लोग बहुत प्रशंसा कर गए, ये महाराज बड़े ऊंचे हैं, ये ऐसे हैं, खूब उनकी प्रशंसा करी। तो महाराज पृथु कहने लगे कि देखो आप लोग मेरी झूठी प्रशंसा क्यों करते हो। स्तोत्रमपीच्यवाच है, भगवान को छोड़ करके ध्यान से सुनना, ध्यान से। आजकल ये परंपरा है कि कोई आदमी है उसकी झूठी प्रशंसा करो ताकि वो राजी हो जाए, और अपनी भी कोई प्रशंसा करता है झूठी प्रशंसा तो राजी हो जाते हैं कि आज हम गए सभा में हमारी बहुत प्रशंसा की साहब। अपनी अपने कानों से प्रशंसा सुनना ये मौत के समान है, मृत्यु के समान है। अपनी प्रशंसा अपने कानों से सुनना हो, महाभारत की कथा आती है जिस समय में कर्ण ने युधिष्ठिर को पराजित कर दिया और युधिष्ठिर का सारथी उसको कर्ण के सामने से निकाल ले गया और अलग ले जा करके उसका उपचार करने लगा। इधर अर्जुन को पता चला कि कर्ण ने मेरे बड़े भाई को घायल किया है, तो अर्जुन आकर के युद्ध करने लगा। युद्ध करने से पहले वो युधिष्ठिर से मिलने के लिए गया कि मेरे बड़े भाई को कोई चोट तो नहीं पहुंची, घायल हो गया, क्या पता क्या उनके दशा हो, तो वो पूछने के लिए गया। तो जाते ही युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन कर्ण को मार के आए हो कि कैसे आए हो? कर्ण ने कहा, मुझे तो पता चला कि आप घायल हो गए, मैं तो आपका ये हालचाल पूछने आया हूँ। तो कहा, धिक्कार तेरे गांडीव धनुष को कि मेरी तो ये दशा हुई है और तू कर्ण को जिंदा छोड़ के आ गया, धिक्कार तेरे गांडीव धनुष को। भगवान भी वही थे। अब गांडीव धनुष का यदि कोई धिक्कार कर दे तो भाई उस समय उसकी प्रतिज्ञा थी अर्जुन की, मैं उसका सिर उतारूंगा। तो अर्जुन ने उस समय तलवार निकाल ली। भगवान ने कहा, क्यों क्या करते हो? पकड़ लिया भगवान, क्या करते हो? कि मेरे बड़े भाई उन्होंने गांडीव को धिक्कार दिया, मैं इनका सिर उतारूंगा। अरे बड़े आदमी को ऐसे थोड़ी मारा जाता है, तुमको बड़े आदमी को मारना ही नहीं आता। बड़े आदमी को मारना हो तो उसको रे तू बोल दो, उसको ओछा बोल दो, वो मृत्यु के बराबर है। तो युधिष्ठिर जी को ओछा बोल दिया कि तू तो कायर के समान होकर के भक्के आ गया और मेरे गांडीव को तू ऐसा बोलता है, ऐसे रे तू बोला। तो युधिष्ठिर को बुरा लगा, पर क्या करे, क्या भगवान ने कह दिया वो भी क्या करे। अब जो है फिर उसने तलवार निकाली। अब ध्यान से सुनना, अब तलवार निकाली, अब क्या कर रहा है अर्जुन, क्या मैं मेरा सिर काटूंगा? क्यों? कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो युधिष्ठिर को मारेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने रेतु करके युधिष्ठिर को मार दिया तो मैं अपना सिर उतारूंगा। अरे ऐसा नहीं, अपना मारना ऐसा थोड़ी होता है। अपना मारना होता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करो। वो आदमी अपने ही सिर को काट रहा है। तब अर्जुन कह रहा है, मैं अर्जुन कुंती पुत्र अर्जुन बड़ा विशाल योद्धा खूब जो है योद्धाओं में अग्रणी, ऐसे करके खूब प्रशंसा करे भगवान ने, बस ठीक हो गया। अपनी प्रशंसा खुद करना अथवा लोगों से अपनी प्रशंसा सुन करके राजी होना, ये वास्तव में सभ्य आदमी के लक्षण नहीं, साक्षात मृत्यु के रूप है। तो पृथु महाराज कहने लगे, मामई यभुवन वितथा गिरोवह, कहीं आपकी वाणी झूठी प्रशंसा करने से व्यर्थ न चली जाए। तो सभ्य पुरुष होते हैं वो भगवान की ही प्रशंसा करते हैं और भगवान की प्रशंसा सुनते हैं। जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः, सभ्य पुरुष होते हैं उनको तो अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा संकोच होता है और न वो दूसरे की ऐसी कोई बिना देखी प्रशंसा भी करते हैं, ऐसे वो प्रशंसा करते भी नहीं है। तो भाई आपके जो ये वचन है इन वचनों से तो हमको बहुत लज्जा आती है। रिमंत परमोदारा पौरुषम वा विगर्णितम, इसलिए आप हमारी प्रशंसा मत करो। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पृथु ने तो संसार की शिक्षा के लिए बात कही। अब ये देखो अर्थात ध्याय है ना, ये मान बड़ाई आदर ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, अपने को पता नहीं चलता है। मान बड़ाई आदर ये पदार्थ है, जिनसे हमको सुख मिलता है वो सब पदार्थ है, कोई सूक्ष्म पदार्थ कोई स्थूल पदार्थ। तो मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पृथु महाराज तो साक्षात भगवान के अवतार थे ना, इस कारण से उनको वो जो स्तुति करने वाले स्तावक लोग उनकी फिर भी प्रशंसा किए और प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा करने वाले होंगे, इनकी जितनी महिमा कहो उतनी कम है, ये बड़ा न्याय करने वाले होंगे, अदंड व्यक्ति को कभी दंड नहीं देंगे चाहे उनका शत्रु ही क्यों न हो, और जो दंडनीय व्यक्ति है उसको जरूर दंड देंगे चाहे इनका पुत्र ही क्यों न हो, यदि पुत्र ने भी अपराध किया है तो ये दंड देंगे और यदि शत्रु ने भी अपराध नहीं किया तो उसको ये दंड नहीं देंगे, ऐसा इनका निष्पक्ष राज्य होगा। और जिस प्रकार से ये वायु है वो स्वतंत्र होती है, वायु निर्लेप होती है, ऐसे ये सबसे निर्लेप उदासीन रहेंगे। वे गुप्तचरों के द्वारा प्रजा के अंदर बाहर क्या हो रहा है इसका खूब अच्छे ढंग से निरीक्षण भी करेंगे। ऐसे करके उनकी प्रशंसा की और उस प्रशंसा में एक बात बताई, ध्यान देना कि एक बार बड़ा भयंकर अकाल पड़ेगा, उस समय में इस पृथ्वी पर सब लोग दुखी होकर के महाराज से निवेदन करेंगे, तो महाराज पृथु है वो पृथ्वी को फिर मारने के लिए दौड़ेंगे और फिर जो है पृथ्वी उनको अवकाश देगी और पृथ्वी जो है कहेगी कि आप मेरा दोहन कर लीजिए, फिर पृथ्वी को दूहेंगे, सब जगह धर्म की स्थापना हो जाएगी, फिर वे यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ के अंदर उनका घोड़ा इंद्र ले जाएगा और फिर जो है भगवान के कहने से ये उस इंद्र के साथ में बैर विरोध छोड़ देंगे, तब सनकादि ऋषि के पास में बैठ करके ये सत्संग करेंगे। ऐसी ऐसी इनकी पहले ही बातें उन्होंने बता दी। तब विदुर जी ने कहा कि महाराज ऐसा पृथ्वी का गुप्त चरित्र है, पृथ्वी भी इन पर नाराज होगी कि हाँ होगी भाई, और फिर सनकादि आकर सत्संग कराएंगे, सनकादि को सत्संग होगा तब तो महाराज इनका चरित्र सुनाओ। अब देखो ये बताया ना कि अर्थात ध्याय चल रहे, पदार्थ है ना, कहीं उपलब्धि होती है कहीं अनुपलब्धि होती है, तो ये प्रजा है इसको अन्न नहीं मिला पदार्थ नहीं मिले तो ये प्रजा दुखी हो गई। मैत्री जी बोलते हैं तो प्रजा निरन्य क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्क्षा मदेहा पतिमभ्यवोचन, बिचारी सारी प्रजा दुखी भूख से त्रस्त हो गई और राजा पृथु से कहने लगे कि महाराज क्या बताएं, बहुत बहुत भूखे हैं, हम हमको खाने के लिए नहीं मिला है, और पशु है इनको चारा नहीं मिल रहा है, पीने के लिए जल नहीं मिल रहा है, ये क्या बात है। तुम लोग खेती करते हो, खेती तो करते हैं, परंतु ये पृथ्वी है वो बीज को उत्पन्न नहीं होने देती। देखा कि भाई प्रजा तो धर्म पर चलती है, पृथ्वी जो है ये खेती नहीं होने देती। तो महाराज पृथ्वी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपना धनुष मार लिया और धनुष मार लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुई। पृथ्वी गाय बन गई। अब गाय बन जाए, गाय पर कौन हाथ उठाए बताओ, गाय पर कौन हाथ उठाए। तो महाराज पृथ्वी ने कहा कि ए पृथ्वी, मैं तेरा वध करूंगा, तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने हमारे प्रजा को अन्न से रहित कर दिया है। प्राग सृष्टानी स्वयं हुआ, ब्रह्मा जी ने जिन घासों को और जिन अन्न को पैदा किया था उन सब की शक्ति तेरे अंदर रखी है उगाने की, पोषित करने की, और तू उस शक्ति का उपयोग नहीं करती है, हम तुझे मारेंगे। तो पृथ्वी ने कहा, महाराज आप मुझे मारोगे, आपने तो वराह अवतार धारण करके रसातल में गई हुई मेरा उद्धार करने वाले थे, आप तो धराधर के नाम से विख्यात है, और आप मुझे मारेंगे। महाराज चराचर जगत के उत्पन्न करने वाले हैं आप, आपकी अतार्क्य माया के द्वारा ये सारा संसार पैदा हुआ, और आप हमारी रक्षा के लिए थे, और आप ही हमको मारेंगे तो हमारी कौन रक्षा करेगा। कि क्यों नहीं हम मारे तुमको, तुम्हारा बर्ताव कैसा हो रहा है प्राणियों के साथ। तो पृथ्वी ने पृथ्वी की बात सुनकर वो पृथ्वी बोली कि देखो महाराज मेरी पूरी बात सुनो, आपके राज्य के अंदर ऐसे ऐसे पुरुष रहते हैं जिन पुरुषों को मेरा अन्न खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मेरा अन्न खाकर ये यहां आपकी प्रजा को कष्ट देने वाले होते हैं, इसीलिए मैंने ये अन्न को रोक लिया है। चोरी भूते त लोके हम यज्ञार्थे अग्रसम औषधि ही, लोग चोरी करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, उद्दंडता करने लग गए, मेरा अन्न खा करके शरीर में बल लेकर उस शारीरिक बल का दुरुपयोग करने लगे ना, इस कारण से हमने ये अन्न को रोक लिया। तो आप विश्वास दिलाइए कि आप दुष्टों को अपने वश में कर लेंगे, कि विश्वास दिलाते हैं, तो यदि आप विश्वास दिलाते तो हम जो है सब जो है औषधि हम प्रकट कर देंगे। तो उन्होंने विश्वास दिलाया तो कहा कि अब ऐसा करो कि बछड़ा ले आओ और एक दूने वाला ले आओ, मेरे से जो चीज चाहे सो दू लो, ध्यान देना गाय की महत्ता क्यों है। गाय की महत्ता क्यों है कि गाय में सबकी चीज मिलती है, गाय में देवताओं की चीज मिलेगी, गाय के अंदर मनुष्यों की चीज मिलेगी, गाय के अंदर सबकी चीज मिलेगी। तो उसने कहा पृथ्वी ने कि आप बछड़ा बनाइए और दूने वाला बनाइए और एक मेरे दूने का पात्र लेकर के आ जाए, दूने वाला हो और बछड़ा हो और एक बढ़िया पात्र हो, आकर के मुझे दूना चालू करे, जो जो व्यक्ति जो जिसकी जो कामना है वो सब कामना पूरी हो जाएगी। देखो गाय है ना, इसको ऐसे ऐसे लोग भी हुए कि गाय को घर में रखा और उस घर में कोई संकट थे वो संकट टल गए गाय से, कि हे गौ माता मेरे घर में ऐसा ऐसा संकट है। गाय वहां बैठ करके सांस लेती है, खा पी करके जो एक आराम का श्वास लेती है, उस श्वास के कारण से घर की आधी व्याधि बीमारी और कोई कुग्रह माने खराब ग्रहों का योग ये सब टलता है। जिसकी आमदनी में से जिसके आय में से गाय का भरण पोषण होता हो उस व्यक्ति की आय जो होती है वो आय शुद्ध हो जाती है, क्योंकि पैसे के कमाने में कई प्रकार की विकृतियां आती है, झूठ हम बोल देते हैं पैसे के लालच में आकर, कई प्रकार की विकृतियां हैं। अब क्या वो पैसा यदि गाय की सेवा में लगता है तो वो विकृतियों से रहित शुद्ध हो जाए, साफ हो जाता है। जैसे गोबर है, गोमूत्र है, ये जो है अपवित्र जगह को साफ करने वाली है। ऐसे ही गाय के निमित्त किया हुआ खर्च होता है, वो खर्च भी धन को पवित्र करने वाला होता है। गाय को केवल एक पशु मात्र जैसे और पशु है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। गाय के अंदर बड़ी बड़ी वैज्ञानिकता है, कई चीजें उसमें, सौर तत्व उसमें है। गाय की जो ये ऊपर थुई होती है, हमारे देसी गाय की थुई है, ये इतनी ऊंची क्यों है कि सूर्य से जो एक विलक्षण चीज आती है वो गाय की थुई के अंदर वो जो है कैच होती है, वो उसमें आकर के ठहरती है। अब वो शक्ति गाय में आई, गाय का जो दूध होता है वो दूध बहुत जो है संसार में इससे ऊंचा कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं है गाय के दूध के समान, क्योंकि उसके अंदर से ऐसी मशीनें भगवान ने रखी है गाय के अंदर कि गाय कैसा भी खाते पीते हुए भी उसका जो दूध निकलेगा वो दूध सर्वथा निरोग निकलेगा। हिंदुस्तान के नहीं, सारे संसार की गायों का अभी अप्रैल के अंदर बंगलोर के अंदर एक प्रदर्शन हुआ। एक महात्मा जी ने सारे संसार की गाय के नमूने लाए और सब संसार के एक एक देश से डॉक्टर बुलाया, गवों का डॉक्टर, और बुला करके अपने सामने परीक्षा करवाई कि हर गाय की परीक्षा करो कि कौन से देश की गाय श्रेष्ठ है। सब गायों की परीक्षा करने के पश्चात विदेशी डॉक्टरों ने ये बात माना कि आपके हिंदुस्तान की गाय संसार भर की गाय में सबसे श्रेष्ठ है। हिंदुस्तान की गाय, उसका स्वरूप, उसका गोमूत्र, उसका गोबर, उसका दूध, उसका घी, उसका दही, और सब वो तो सब टेस्ट करेंगे भाई, मांस वगैरह सब उस जो है देखा अपने यंत्रों से कि ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ गौ है, तो ये हिंदुस्तान की गौ है। अब बताओ अपने यहां देखो इस गाय के अंदर कैसी विशेष मत, तो ये बताया ना ये अर्थाध्याय है, तो सब पदार्थ गाय से मिलते हैं। देखो तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि भाई हमको जो है तुमसे प्रजा के लिए चाहिए, तो साहब आप आओ बछड़ा बनो। तो पृथ्वी महाराज ने मनु को जो है बछड़ा बनाया और स्वयं दूने वाले हो गए, और जितना अन्न है, जितनी औषधि है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए सब उन्होंने दू ली। अब इंद्र ने देखा कि अरे हमारी दैव शक्ति भी इसमें रहने वाली है, तो वो इंद्र है वो दूने वाला हो गया, और बृहस्पति को उन्होंने बछड़ा बना दिए, इंद्र है वो बछड़ा बन गया, इंद्र बछड़ा बन गया और बृहस्पति है वो ऋषियों की तरफ से बछड़ा बने, देवताओं की तरफ से प्रहलाद जी बछड़ा बने। ऐसे एक एक पक्ष के एक एक लोग आए और अपनी अपनी चीज उन्होंने ले ली। सब चीज गाय के अंदर उपलब्ध होती है, वो सब चीजें ले ले करके सारे ब्रह्मांड में एक खुशी की लहर छा गई, गाय से देखो हमको क्या क्या मिलता है। तब राजा पृथु ने देखा कि अरे गाय तो गाय होती है, तो गाय के कारण से इस पृथ्वी का नाम है, पृथ्वी के कारण से पृथ्वी नाम है इसका। नहीं तो पहले धरणी बोलते थे, अवनी बोलते थे, वसुंधरा बोलते थे, इसको क्षमा बोलते थे, कई नाम थे, पर इसका नाम पृथ्वी नाम राजा पृथ्वी के कारण से पड़ा। और फिर इस पृथ्वी को ठीक समतल किया, आज जितने नगर बसे हुए हैं महाराज पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी को समतल किया तब बसे हैं, और जगह जगह उन्होंने पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाए ताकि बरसात के समय में पानी तो हो जाए, फिर वो पानी इकट्ठा रहे और सब लोगों को जल मिले। ऐसा काम करने के पश्चात अब देखो एक तरफ तो गाय की रक्षा की और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि इस लोक में तो हमको चीज मिल जाए, हमको परलोक में क्या मिलेगा, तो उन्होंने यज्ञ किया। उन्होंने यज्ञ किया तो जो है सोवा यज्ञ वो कर रहे थे, 99 यज्ञ तो कर लिया, और हर यज्ञ के अंदर देवता आते थे और उनको यज्ञ के अंदर सब सामग्री मिलती थी। अब जब सोमा यज्ञ चालू हुआ तो इंद्र के मन में द्वेष पैदा हो गया कि महाराज पृथु है, कहीं इंद्र बन जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब तक कोई दूसरा इंद्र नहीं आता तब तक तो मैं सीट पर हूं, और जो ही दूसरा कोई इंद्र आ गया तो मेरी सीट तो खाली हो जाएगी। ये सबको भय रहता है, जो वो ऊंचे पद पर रहने वाले हैं उन सबको भय रहता है। ब्रह्मा जी को भय लग गया। अब ब्रह्मा जी कितनी बड़ी आयु वाले हैं, इंद्रादि देवता तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा पद पर रहने वाले हमारे ब्रह्मा जी वो भी भयभीत हो गए, अरे हमारा ये ब्रह्मा पद चला जाएगा। तो अभी तो इंद्र ही भयभीत हुए, वो क्या करेंगे, यज्ञ के अंदर पशु को चुरा करके इंद्र ले जाए, वो भी कैसे, साधु के वेश में आए, जटा वगैरह लगाई, लाल कपड़ा पहन लिया, साधु के वेश में आए। और इस वेश में कोई आदमी अच्छाई का ही तो बैम करेगा, बुराई का तो बैम करेगा ही नहीं, अनादि काल से इस वेश में आदर है। कोई चोर व्यक्ति भी ऐसा कपड़ा, हमारे जैसा ही कपड़ा पहन के जाएगा तो लोग उसको प्रणाम करेगा, सब संत जा रहे हैं, संत क्या श्रद्धा है यहां हमारी। तो इंद्र आया, वो घोड़े को चुरा के ले गया, घोड़े को चुरा के लेके जा रहा था, तो हम राजा पृथु तो यज्ञ में बैठे हुए, उनका लड़का आया, लड़का उसके पीछे पीछे गया, तो वो भी क्या करे कि हमारे पीछे आता देख करके और वो उस पशु को छोड़ दे, खूब गायब हो जाए। तो अत्रि ऋषि ने देख लिया, अत्रि ने कहा कि देखो, उसका नाम था विजिताश्व, पृथु का पुत्र था, कि देखो ये पृथु बहुत उत्पात कर रहा है, नहीं ये इंद्र बहुत उत्पात कर रहा है, वेश बदल के तुम्हारा घोड़ा ले जाता है, तुम सावधान रहो। तो ये पाखंड नाम तब से चालू हुआ, इंद्र ने चालू किया पाखंड, पाखंड माने पाप खंड, पाखंड पाप होता है ना, वो पाप के टुकड़े हुए पने, पाप के कई रूप बने, तब वो पाप खंड, पाप खंड बोलते बोलते पाखंड नाम चालू हो गया। अस्तु, अब जो है एक बार क्या हुआ कि जब फिर भी इंद्र नहीं माना, तो अब की बार तो वो स्वयं अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के महाराज पृथु इंद्र के पीछे दौड़ने लगे। तब वहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर मना किया कि देखो महाराज, ये यज्ञ वगैरह ऊंचे काम क्यों किए जाते हैं, ध्यान देना, ऊंचे काम इसलिए किए जाते हैं कि हमारे भाव ऊंचे होने चाहिए। अब देखो, हम लोग सत्संग करते हैं, हम लोग कथा करते हैं, आप लोग कथा सुनते हैं, अब हम कथा कहने वाले आपको लगता है बहुत ऊंचे हैं, और हम यदि वहां कहीं नीचे कोई बात करते हो या कहीं सिनेमा में जाते हो तो आप कहेंगे महाराज आप कथा करने वाले होकर ऐसा काम करते हो। अर्थात ऊंचा काम करना है तो वो ऊंचे भाव के लिए किया जाता है। आप ये यज्ञ कर रहे हो और आप धनुष बाण लेके मारने के लिए जाओगे, किसी को मारोगे अच्छा लगेगा, आप बैठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, तो मेरे यज्ञ में बाधा डालता है। कोई बात नहीं, आपके 99 यज्ञ हो गए सो तो हो गए, एक यज्ञ यदि ये नहीं चाहता है, 100 यज्ञ यदि पूरा नहीं होता है तो नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आप इंद्र पद पर नहीं जाओगे, यही तो बात है, आपको लेना क्या है, संसार में नुकसान कितना हो रहा है, पाखंड कितना फैल रहा है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः, ये पाखंड जहां फैलता है तो अपूज्य व्यक्तियों का तो पूजन नहीं होता, अपूज्या अपूज्यों का तो पूजन होता है, पूज्यानां व्यतिक्रमः, पूजनीय जो होते हैं, पूजनीय व्यक्तियों का अतिक्रमण होता है, उनको कोई पूछता ही नहीं, और अपूज्यों का पूजन होता है, ये पाखंड है, पाखंड का रूप। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः, पूजनीय होते हैं उनका तो कोई आदर करता नहीं, अपूज्यों का आदर होता है तो वो पाखंड होता है। इसलिए अब आप इस यज्ञ को ही बंद कर दीजिए। धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडैर इंद्र निर्मितैः, आपको सो यज्ञ की जरूरत ही नहीं है, आपने तो यहाँ वेन के द्वारा जो एक गलत परंपरा डाली गई थी, एक सामर्थ्यवान पुरुष ही उसको मिटा सकता है, इसलिए आपने यहाँ वेन के शरीर से अवतार लिया है। नहीं तो आप कोई वेन के शरीर से पैदा होने हो सकने लायक थे क्या? पर वेन जितना दुष्ट था उसकी दुष्टता के मुकाबले में उतने ही प्रकार की जिसमें सज्जनता हो, दीनता, दयालुता हो, दीन वत्सलता हो, वही पृथ्वी का शासन कर सकता, इसलिए आपको अपने जो है ये यहाँ बैठाया राजगद्दी पर। अब आप इस यज्ञ को छोड़ दीजिए। महाराज पृथ्वी ने कहा चलो, जिससे राग द्वेष बढ़ता है, छोड़ दिया। महाराज यज्ञ को छोड़ करके अवभृत स्नान वगैरह करके पंडितों को वहां से विदा कर दिया। जब वो विदा कर दिया, ध्यान देना हो, ध्यान देना, जब महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया, पृथ्वी महाराज ने सबको विदा कर दिया, तब वहां पर भगवान विष्णु उस इंद्र को लेकर के वहां राजा पृथ्वी के सामने उपस्थित हो गए बिना बुलाए। जैसे कल दक्ष यज्ञ के यज्ञ में बिना बुलाए आए ना, ऐसे ही जो है यहां बिना बुलाए भगवान वहां उपस्थित हो गए। भगवान खुश हो गए क्योंकि तुमने भीतर से इंद्र को मारने का जो संकल्प आया, क्रोध आया, उस क्रोध को जीत लिया। ये बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, 100 यज्ञ से बड़ा यज्ञ है, और इंद्र को साथ में लेकर आए। और भगवान ने कहा भी, ये नहीं पंखा बना, भगवान ने कहा भी कि देखो महाराज, क्षमा पायत है, इसको क्षमा कर दीजिए इंद्र को, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किसी के अपराध को अपने मन में स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका हृदय अपराधी नहीं होता, अपराधी के हृदय में ही दूसरे का अपराध चिपकता है, सगुण में ही आकृष्ट होता है, चुंबक होता है ना, चुंबक से लोहा आकृष्ट होता है, तो चुंबक के अंदर एक ऐसी कोई शक्ति है उस लोहे को खींचने की, वो लोहे, उस लोहे की शक्ति और उसकी शक्ति एक होती है तो वो खींचती है। तो अपराधी के अपराध को वो ही व्यक्ति याद रखता है जिसके हृदय में अपराध कहीं न कहीं छिपा हुआ रहता है, वो अपराध को पकड़ता है और याद रखता है, इसने अपराध किया, इसने अपराध किया। आप जैसे महापुरुष जिनके हृदय में कोई अपराध का नामो निशान ही नहीं है, वो इंद्र का अपराध क्यों याद रखेंगे? और पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया, आप जैसे पुरुष भी यदि मोहित हो जाएंगे तो फिर महाराज, फिर सत्संग करना और इतने बड़े अनुष्ठान करना, इसका कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। इसलिए महाराज आत्मा की तरफ विचार करो, अपना आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसे कोई कंगाल आदमी हो, घर घर में रोटी मांगता, फिर उसको कहे अरे तू क्यों मांगता है, तेरे घर में खजाना पड़ा है ना रे, मुझे तो पता नहीं है कि जाओ खोद तेरे वहां, हमको मालूम है तेरा बाप बहुत पैसे वाला था और उसने यहाँ पर खजाना अंदर तेरे गार्ड रखा है, देख देख हमको बताया था, तेरे बाप ने कहा था कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद बेटे यदि इधर उधर बिल्कुल ही मांगने लग जाए, कुछ खाने को नहीं तो बता देना वो धन, वो जो है धन, और कमा के खाए तो कोई बात नहीं है। तो तेरा बाप मर गया और हम भी मर जाएंगे, पता नहीं तेरा, नहीं तेरे घर में हम तेरे को खजाना बताएं, उसको खजाना मिलता, अरे वो तो एक क्षण पहले वो कंगाल था, एक क्षण में वो जो है लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, अरे अब कुछ धन खजाना मिल गया, अब क्या है। ऐसे ही हम लोग संसार में भटकते हैं, यूं भटकते हैं, मंगते बने हुए, संत महात्मा भगवान हमको खजाना बताते, खजाना, अरे तुम क्या है, तुम इतने बड़े खजाने वाले हो, इतने बड़े संपत्ति, तुम आत्मा हो, आत्मा कहां, तुम शरीर की तरफ विचार करने लगे, छोड़ो इस शरीर की चिंता, आत्मा पर विचार करो, ये आत्मा एक धन है। तो स्वयं भगवान बोलते हैं, एक है शुद्ध है स्वयं ज्योतिर् निर्गुणो सब गुणाश्रय है, ऐसा जो अपना आत्मा उसको तुम पहचानो। और कूटस्थम इमं आत्मानम यो वेद आपनोति शोभनम, जो उस आत्मा को पहचाना हुआ होता है ना, वो खुद भी आनंदित रहता है, दूसरों को भी आनंदित करता है, और उसकी जगत में शोभा भी होती है, शोभा ही वही है, जगत है ही उनके लिए, ये जगत उन्हीं लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपना आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया, उनके लिए जगत है ये। ये गांधी मैदान का पंडाल, ये सब किन के लिए है भाई? जो कथा सुनते हैं उनके लिए, सत्संग करते हैं उनके लिए है। ये व्यवस्था जैसे कथा के लिए, सत्संग के लिए, इसके लिए बनाई हुई है, ऐसे संसार की व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो अपने आत्म तत्व पर विचार करने के लिए मानव शरीर में आए हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बुरा, अपने साथ अन्याय करते हैं। देखो राजन, भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध संवृदाः। मेरे साथ प्रेम करने वाले पुरुष होते हैं वो संसार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर मोहित नहीं होते। क्यों? कि भिन्न से लिंग से गुण प्रवाह है। और ये जो अपना सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इसका आत्मा से कोई लेना देना है, बिल्कुल भिन्न है ये, उससे अलग है। क्योंकि द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मन है, माने इसका स्वरूप है कि इसमें द्रव्य क्रियाकारक माने पदार्थ होगा, क्रिया होगी और उसके इंद्रियां होगी, इंद्रियों के देवता होंगे, उनसे मिला हुआ इसका शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उससे ये आत्मा बिल्कुल भिन्न है। भिन्न से लिंग से गुण प्रवाह हो, द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मन है। इसलिए भाई अपनी समता पर विचार करो और तुम प्रजा की रक्षा में लगे हो वैसे ही लगे रहो। अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना, देखो बहुत बढ़िया बात भगवान बोलते, थोड़ा नजदीक। भगवान बोलते कि देखो, मैंने तो आपको अपनी बात सुना दी, आपके पास में बहुत जल्दी सनकादि ऋषि आने वाले हैं और उनसे आप खूब ज्ञान की बातें कर लोगे। रस्वेन कालेन, बहुत जल्दी आपके पास सनकादि ऋषि आएंगे। अब बोलो तुम मेरे से क्या वरदान चाहते हो? तुम मेरे से कोई वरदान ले लो। अब देखो सामने भगवान खड़े हैं और महाराज पृथ्वी को भगवान ने खुला बोल दिया कि तुम मेरे से कोई भी वरदान लेना है तो वरदान ले लो। तो मैत्री जी महाराज कहते हैं क्या कि उसी समय में महाराज पृथ्वी ने उछल करके और इंद्र को तो अपने छाती से लगाया और भगवान के सामने वो चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, महाराज वरदान देने के लिए आपने मुझे कहा है ना, तो महाराज मैं कोई छोटा मोटा वरदान मांगने वाला नहीं हूं। जो सुख मुझे इंद्रियों का सुख है वो तो मुझे नरक में भी मिल सकता है। ये शब्द का सुख है, स्पर्श का सुख है, ये रूप का सुख है, गंध का सुख है, रस का सुख है, ये मुझे स्वर्ग में भी मिल जाते हैं, नरक में भी मिल जाते हैं। ये चीज तो मैं आपसे मांगने से रहा, मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो महाराज आपसे एक दो प्रार्थना करता हूं और एक दो चीज मांगता भी हूं। आपने कहा कि तुम्हारे यहाँ सत्संग होने वाला है, सनकादि ऋषि आने वाले हैं, तो आप महाराज हमारे 10,000 कान दे दो। दो कान से सत्संग की बातें सुनने में छूट जाती है, आप हमको 10,000 कान दे दो। देखो ये नहीं कहा कि महाराज आपके रूप को देखने के लिए मुझे 10,000 नेत्र दे दो। पृथ्वी ने नहीं माना, मांगा पृथ्वी ने मांगा आप हमको सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान दो। कर्णायुतम, ऐसे 10,000 कान हो, एषमे वरस्यात्, ये मेरा वर वरदान होना चाहिए, 10,000 कान दीजिए हमको। माने भगवान की बात सुनने में जो हमको लाभ होता है वो भगवान की, भगवान के दर्शनों के अंदर वो लाभ हमको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शनों में हमारी मुख्यता नहीं है और भगवान के चरित्र सुनते हैं उसमें हमारी मुख्यता होती है। हमारा हमारी श्रद्धा हमारा भाव ये मुख्यता से काम करता है। और भगवान के दर्शनों में तो भगवान की मुख्यता काम करेगी। अर्जुन ने भगवान के दर्शन के लिए कहा तो यूं आंख फाड़ने लगे, महाराज मैं तो कैसे दर्शन करूं, कैसे दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि तू इन चर्म चक्षु से नहीं देख सकता, तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। ऐसे ही न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित नयत्र चरण यदि नयत्र युष्मत चरणाम बुझा सवय महत्तमांतर हृदयाद मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेशमेवर है। मैं और कुछ नहीं मांगता, आपसे 10,000 कान मांगता हूं। क्यों भाई, क्यों मांगते हो? क्योंकि संत महात्मा है वो भूले भटके हम लोगों को, जो हम आपके तत्व को भूल जाते हैं उनको याद दिला देते हैं। स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमाना, विस्मृत तत्व को याद दिलाने का काम संत लोग करते, तो आपकी स्मृति आ जाती है। घर के काम धंधे में लगे हुए थे, हम आपको भूल गए, पर सत्संग होता है, कथा होती है, तो आपकी याद आ जाती है। आपकी याद आता ही बस हम तृप्त हो जाते हैं। ये तो हमने वरदान के लिए आपसे कहा। अब एक छोटी सी प्रार्थना है महाराज। क्या देखो, एक बच्चे के समान पृथु बोलते हैं। क्या कि महाराज मैं आपके चरणों में बैठूं, उस समय लक्ष्मी जी भी आपके चरणों में आकर के बैठेगी, तो महाराज उस समय में लक्ष्मी जी का और हमारा आपस में झगड़ा होगा। मैं तो कहूंगा कि मैं पैर दबाऊंगा, लक्ष्मी जी कहेगी कि नहीं मैं पैर दबाऊंगी। अब वो जगत की जननी है, सर्वशक्तिमत्ता सर्वशक्तिमती है। अब महाराज मेरे पास तो वो बल नहीं, आप उस समय महाराज मेरा पक्ष ले लेना, आप उस समय में लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेकर के मेरा पक्ष ले लेना। ऐसे ऐसे उन्होंने कहा और अंत में कहा कि भगवान ने कह दिया कि मई भक्ति रस्तुते, जाओ तुम्हारी मेरे में भक्ति होगी, जाओ जाओ। कहना तो ये था कि 10,000 कान दे दिया, वो तो कहा नहीं, और ये कहा कि जाओ मेरे में तुम्हारी भक्ति हो गई। तो 10,000 कान भी तो भक्ति के लिए ही मांगे थे ना, इसलिए भगवान समझ गए और कह दिया माया मदियाम तरतिस में दुस्त्यजाम, मेरी दुस्त्यजाम माया को तू तर जाएगा। भगवान तो अदृश्य हो गए और इंद्र भी चला गया। अब उसके बाद जो है उन्होंने ज्ञान सत्र किया। ज्ञान सत्र हो, ज्ञान सत्र माने जैसे ये अभी ज्ञान सत्र, ज्ञान यज्ञ। अब देखो दोनों बात बताते हैं। हमारे मैत्रेय जी महाराज बताते हैं कि पृथु महाराज ने दोनों यज्ञ किया। एक तो आहुति परक यज्ञ किया जिसमें तो बाधा पड़ी, 100 यज्ञ किया पर इंद्र की बाधा पड़ गई, और अब करते हैं वो ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की बात बता रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ किया। अब देखो ज्ञान यज्ञ किया तो सब पुरुषों को बुलाया, वहां सब लोग आए और उसमें राजा पृथु भी विराजमान हो गए। राजा पृथु ने सब लोगों से कहा देखो भाई आप हम सभी एक ही जगह के आदमी, एक ही पृथ्वी पर रहने वाले हैं और एक ही परमात्मा की प्राप्ति में लगने वाले हैं। राजा का ये मुख्य काम होता है कि अपनी प्रजा को परमात्मा की सेवा करने का मौका दे, परमात्मा की स्मृति उनके अंदर जगाए, ये राजा का धर्म होता है। यदि राजा प्रजा से कर तो लेता है लेकिन प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वो प्रजा नाम समलम भूंगते, वो प्रजा का जो है पाप खुद भोगा करता है। इसीलिए बड़े बड़े राजा लोग हुए जिन्होंने भगवान की तरफ सबको लगाया, अपने जीवन से भी लगाया। बड़े बड़े राज्यपाट छोड़ करके जंगल में गए ताकि लोग जो है उनके जीवन से सीखें। एक राजा वेन हो गया वो कोई आदर्श नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता था कि संत महापुरुष होते हैं वे हमको यही बताते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम रखा जाए। जिनके चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, और दूसरी बात है कि यहाँ नसो अनेक गुणों अगुणों ध्वरे, वे भगवान अनेक रूप वाले हैं। इस यज्ञ के अंदर भी देखो द्रव्य गुण क्रिया उक्ति भी पृथक विध है। ये जितना सामान है, जितनी वस्तुएं हैं, जितनी वाणियां हैं, जितना दृश्य है, वो एक भगवान के अनेक रूप है। देखो मिट्टी के बने हुए अनेक पदार्थ हैं, ये मिट्टी की परात है, ये मिट्टी का तवा है, ये मिट्टी की कटोरी है, ये मिट्टी की थाली है। तो देखो ये सब चीजें तो अलग अलग है, परंतु है इनमें एक मिट्टी मिट्टी। सोने के अनेक आभूषण में सोना ही सोना, ऐसे ही जगत के सब पदार्थों में एक भगवान ही भगवान है। हम लोगों को यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे मन में यहाँ ब्राह्मणों के प्रति आदर के भाव से साधना प्रारंभ करनी चाहिए। ब्राह्मणों का आदर करो, पूज्य पुरुषों का आदर करो, माँ बाप का आदर करो। यहाँ से सोपान चालू होता है, यहाँ जैसे सीढ़ियां चालू होती, छत पर चढ़ना हो तो इस सीढ़ी पर पैर रखो, इस सीढ़ी पर पैर रखो, यूं करते करते हम छत पर चढ़ते हैं। छलांग लगा के तो भाई नहीं चढ़ सकते, गिर जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे, इतना ऊंचा है कैसे चढ़ेंगे। तो सोपान होता है, सीढ़ियां होती है। ऐसे ही यहां हम अपने बड़ों का आदर करना चालू करो। माँ बाप का आदर करोगे तो भगवान का आदर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। संतों ने कहा है कि फल तरते टूटा पछे बधे न बिलगे जाए, गुरु वे मुख नहीं नीपजे भावे गोविंद गाए। जब तक वो फल है, लता से जुड़ा हुआ है, तब तक तो देखो वो फल पकता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब वो लता से टूट जाएगा, वृक्ष से टूट जाएगा, फिर वो जो है फल वो स्वादु नहीं होगा, रस वाला नहीं होगा, पकेगा नहीं, कच्चा ही रह जाएगा, उसका वो नष्ट हो जाएगा। वृक्ष से लगे रहने वाला एक फल भी वृक्ष से जुड़ा हुआ है तब ठीक है। ऐसे ही बड़े पुरुषों की कृपा से जुड़े रहो। भगवान से जुड़ने का तरीका है माँ बाप की सेवा करो। माँ की सेवा करोगे, पिता की सेवा करोगे, दादा की सेवा करोगे, दादी की सेवा करोगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, ये अपने से बड़ा मानने का एक स्वभाव अंदर रहेगा। आदर करोगे, स्वभाव रहेगा, वो भगवान का आदर कर लेगा, क्योंकि अंत में आगे भगवान ही सबसे बड़े सिद्ध होते हैं। ब्राह्मणों का आदर करोगे तो भगवान का आदर हो जाएगा। पुराने जमाने में जगह जगह लेटर बॉक्स रहते थे, हर मोहल्ले में 8-10 बिजली के खम्भों के वहां पर एक लेटर बॉक्स रहता था। आजकल तो नहीं रहता ऐसा, लेटर बॉक्स रहते, आदमी उसमें चिट्ठी डाल देते थे अपना। अब यहाँ बैठे बैठे हमने मद्रास से एक लेटर बॉक्स में डाल दिया, कोई उस लेटर बॉक्स में, कोई इस लेटर बॉक्स में। ऐसे ही माता पिता भाई बंधु बड़े बूढ़े क्या है, ये भगवान के लेटर बॉक्स है, इनकी सेवा होती है तो इनकी सेवा से भगवान की सेवा वहां पहुंच जाती है। माता में भगवत बुद्धि करो, पिता में भगवत बुद्धि करो, ब्राह्मणों में भगवत बुद्धि करो, संतों में भगवत बुद्धि करो, गुरुजनों में भगवत बुद्धि करो और उनकी सेवा करोगे, वो भगवान की सेवा हो जाएगी। अब लोग कहेंगे साहब हम पति को हम भगवान कैसे माने, पति का स्वभाव तो अच्छा नहीं है। तो पति का स्वभाव अच्छा नहीं है ये पति की गलती है। आप उसको भगवान मान के सेवा करोगे, आपकी सेवा तो भगवान के खाते में जाएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, शास्त्र में यही कहा है कि स्त्री को जो है चाहिए कि पति को भगवान समझ के उसकी सेवा करे। अब पति के फूटे वो कैसा है कैसा नहीं वो जाने, उसका काम जाने, आपका काम उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करो। तो सेवा करेंगे आप उसकी तो आपको तो भगवान की सेवा मिलेगी, आपके भाव के अनुसार ही सेवा मिलेगी। भावग्राही जनार्दन है, भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते, भाव देखते। भाव क्या है? भाव को देखा करते हैं। तो बताया कि जो ब्रह्मण्य देव है, पुरुष है, पुरातनो नित्यम हरिर चरणाभिवंदनात् अवाप लक्ष्मी अनपायनीम यश है। भगवान ने भी ब्राह्मणों का आदर करके दुनिया को बताया कि तुम किसी का आदर करना सीखो। भगवान तो खुला बोलते हैं कि मैंने जो यश प्राप्त किया है, लक्ष्मी प्राप्त की है, ये सब ब्राह्मणों की सेवा से की है। वे ही भगवान हमको जो है ब्राह्मणों की सेवा से कितनी प्रसन्नता देते हैं। इसलिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ों का आदर करो। वृद्धाश्रयम समृते नु संपद है। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया तो सब लोग कहने लगे कि वाह वाह, देखो देखो, किनी किनी के तो पिता बड़े गड़बड़ होते हैं, बेटा कितने अच्छे होते हैं। हिरण्यकश्यप हुआ, कितना गड़बड़ उसका बाप ये खुद, और उसका बेटा कितना अच्छा। अरे इन्होंने तो पुत्र नाम सार्थक कर दिया, पुत्रेण जायते लोकान। पुत्र कौन होता है? जो पुत्र नाम के नरक से मुक्ति दिलाए वो पुत्र होता है। पुत्र नाम का एक नरक होता है, उससे जो मुक्ति दिलाता है वो पुत्र होता है। वो नरक क्यों मिलता है? कि मरने के बाद जब उसका उचित जो है अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते, उसके पीछे जो कुछ उसका उसके पीछे करना चाहिए वो शास्त्र विधि से करते नहीं, तो उसका पुत्र नाम का नरक मिलता है मरने वाले को। वो पुत्र होता है, वो देखता है मेरा पिता जिंदगी में एक बारी तो मिलता है, एक बारी मरता है। अब इसका जितना बढ़िया संस्कार हो, जितने कायदे से हो, और इनके पीछे श्राद्ध वगैरह जितने कायदे से हो, उस कायदे से मुझे करना है, तो वो पुत्र नाम का नरक नहीं मिलता। उससे तो केवल पुत्र ही छुड़ाता है उस नरक से, पुत्र नाम के नरक से केवल पुत्र छुड़ाता है, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। तो ये आपका पुत्र नाम सार्थक हो गया। देखो हिरण्यकश्यप था, उसके प्रह्लाद जी बेटा हुए, ऐसे तुम राजा वेन के कैसे बढ़िया बेटा हुए हो। हम सबको तुमने कितनी अच्छी शिक्षा दी है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नात्यद्भुतम इदम नाथ है, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं साक्षात भगवान की कला जो ठहरी हो। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की। इतने में देखो वहां सत्संग हो रहा था ना, तो आकाश से वो चारों के चारों सनकादि ऋषि ऐसे दे दीप्यमान जगमगा रहे थे, ज्ञान का स्वरूप प्रकाश माना गया, तो वो जगमगाते हुए यहाँ ऊपर से नीचे आए और आकर के मंच पर जो है आकर के खड़े हो गए। महाराज पृथ्वी ने उनके चरणों को धोया और बड़े प्रेम से उनको उच्चासन पर बैठा करके और कहा कि महाराज आज मेरे सारे अमंगल प्रकट हो गए, क्योंकि आपके चरणों को धोने का मौका मिल गया। ऐसे आप महापुरुष, आपके चरणों को धोने का मौका मिला। महाराज मैं क्या बताऊं? अब देखो इसमें लिखा हुआ वो बात बोलते हैं। इसमें लिखा है कि जो आदमी गरीब है परंतु जिनके घरों में संत महात्मा आते रहते हैं, उनके समान संसार में कोई धनी पुरुष नहीं है, क्योंकि संत एक बहुत बड़ी संपत्ति है संसार की। वो जिनके घरों में आते रहते हैं वे घर बड़े धन्य है, और जिन घरों में संत महात्माओं का आना जाना नहीं होता वे व्याला लय द्रुमावई, वे क्या है ऐसे वृक्ष है जिनमें कोठरे में सांप बैठा हुआ हो। वृक्ष बहुत बड़ा है सांप, और उसके अंदर कोठर में सांप है। ऐसे ही बिल्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, बाग बगीचा लगा हुआ है, सब है, लेकिन भाई वहां सत्संग नहीं होता, संत महात्मा नहीं आते, कथा कीर्तन नहीं होता। कहते हैं वो सर्प के रहने की जगह, हरा भरा पेड़ है, खूब मोटा ताजा पेड़, उसके कोटर में जैसे सांप है वैसे वो रहते हैं। अच्छा महाराज मैं आपसे क्या पूछूं? ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कि आप कुशल पूर्वक तो है, ये क्यों पूछूं? आप कुशल पूर्वक तो है, ये बात उनसे पूछी जाती है जिनके जीवन में अकुशलता की संभावना होती है। क्यों भाई सब ठीक हो ना? तो क्या भाई ठीक नहीं है? तो क्या हुआ? क्या क्या बताएं जी, बहुत भयंकर कष्ट में है हम। इसका मतलब है कि कष्ट जिनके ऊपर आ सकता है उसी से ही हम आशा करते हैं कि तुम्हारे ठीक है ना, और जिनके हरदम ही ठीक रहता है उनको क्या पूछा जाए। उनसे क्या पूछा जाए, उनसे कि तुम ठीक तो हो, कैसे पूछा जाए। वो ठीक में ही रहते हैं हरदम। मछली से कोई पूछता है कि तुम प्यासी हो कि नहीं हो? अरे मछली तो मछली है, वो तो जल में ही रहती है, वो कभी प्यासी रहती है? ऐसे ही आपके विषय में हम कैसे पूछे कि आप कुशल हो, क्योंकि कुशला कुशला यत्र न संति मतिवृत्तय है। आपके अंदर कुशल और अकुशल ये दो भाव होता ही नहीं है। आप तो आत्माराम महापुरुष है, आत्मा में रमण करने वाले, अपने स्वरूप में मगन करने वाले, उसमें कभी अमंगलता आती नहीं है। हम आपसे कैसे पूछेंगे कि महाराज आप कुशल पूर्वक तो हो, ऐसा कहकर के तो आपका अपमान करना है। आप तो हरदम आनंद में रहते हो। हम आपसे एक बात पूछते हैं। देखो ये बहुत अच्छा प्रसंग है, ये बहुत अच्छा सत्संग है। ये चौथे स्कंद में यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया प्रसंग हमको ये लगता है, सबसे बढ़िया प्रसंग, सबसे अच्छा प्रसंग, गहरा प्रसंग। जैसे कोई मक्खन होता हो, खूब बड़ा भारी दही का चाडा, उसमें से खूब दिलौना करके मक्खन है ना, ये मक्खन मक्खन की बात होगी यहाँ। ऐसा सरस ज्ञान है, ऐसा मधुर ज्ञान है, समझ में नहीं आता ये बात अलग हो सकती है। ऐसी सुंदर बातें कही है हमारे सनत कुमार ऋषि ने, बहुत सुंदर बात है भाई। देखो थोड़ा आप लोग स्वस्थता से निद्रालस्य को छोड़ करके सुनना। आज के सत्संग में आपको जो है सत्संग बहुत मिलेगा। ये चतुर्थ स्कंद का हम तो हृदय मानते हैं, ये प्रसंग है जो क्या तो परीक्षा, ये सुखदेव पृथु ने प्रश्न किया है, उनसे निवेदन किया, अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हुए कहते हैं कि महाराज आपके तो खैर अकुशल की संभावना नहीं है, इसलिए कुशल क्षेम तो हम आपसे पूछेंगे नहीं, इसलिए तदहम कृत विश्रम्भ है। कितनी बढ़िया बात कही, आपको पहले ही निवेदन किया था कि मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। देखो ये साधना का जो मार्ग है ये पूर्ण विश्वास पर चलता है, भगवान पर विश्वास, संतों पर विश्वास, संत वाणी पर विश्वास और शास्त्र पर विश्वास, केवल विश्वास पर ही चलता है। और संसार, संसार के अंदर हमारी गाड़ी जो अटक गई वो गलत विश्वास के कारण से ही अटकी है। हमने धन पर विश्वास किया, कुटुंब पर विश्वास किया, शरीर पर विश्वास किया, मनुष्य पर विश्वास किया, समय पर विश्वास किया, जहां जहां हमने विश्वास किया वहीं वहीं से हमको धोखा मिला, मर गए। कुटुंबियों पर विश्वास किया, मर गए। शरीर पर विश्वास किया, शरीर धोखा दे गया। धन पर विश्वास किया, वो धोखा दे गया। इसलिए कहते हैं ये विश्वास की परंपरा इधर चलाओ, इधर भगवान की तरफ, संतों की तरफ। तदहं कृत विश्रम्भ, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करके अब मैं आपसे संप्रिच्छे भवे तस्मिन क्षेम केनांजसा भवेत। मैं आपसे पूछता हूं कि महाराज मनुष्य का सरलता से कल्याण कैसे हो सकता है, कृपा करके ये बताइए आप। और महाराज आप तो स्वानाम अनुग्रहाय, अपने आत्मीय लोगों पर कृपा करने के लिए ही आप ऐसे बिछड़ा करते, और बताओ आप आकाश से यहां क्यों आए? कोई आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं, कोई आपको भेंट पूजा की जरूरत नहीं, कोई आपको माला तिलक की जरूरत नहीं, कोई आपको मान बढ़ाई की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? आप क्यों आए आकाश से यहाँ? आप तो आकाश में बड़े प्रेम से विचरण कर रहे थे, यहाँ क्यों आए? स्वानाम अनुग्रहाय। देखो एक कृपा की आकांक्षा होती है, जो कल्याण के मार्ग पर चलता है वो संत की कृपा चाहता है, वो विश्वास तो करता है लेकिन साथ में कृपा चाहता है, संत की कृपा मिले, भगवान की कृपा मिले। क्योंकि ज्यों ज्यों साधन में जाता है त्यों त्यों वो अपने को दीनहीन गरीब मानता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे संतों की वाणी में पढ़िए, गोस्वामी जी महाराज की विनय पत्रिका है, जिसने विनय पत्रिका नहीं पढ़ी उसने वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ाया, चाहे कितनी भागवत कह लो, सुन लो, कुछ भी कर लो, विनय पत्रिका नहीं पढ़ी तो आप देखो विनय पत्रिका में क्या गोस्वामी जी महाराज ने अपने को एक दीनहीन उपस्थित किया है भगवान के सामने। ऐसे दीनहीन होकर के संतों के सामने भगवान के सामने रहना चाहिए, अनुग्रह है महाराज। आप तो कृपा ही कर सकते हो, हम कृपा ही आपके कृपा से ही हम हमारा काम और हमारे पास क्या मिले। क्यों ये मार्ग ऐसा है इसमें भगवान की संतों की कृपा न हो तो भाई ये मार्ग चलने लायक है ही नहीं। स्वानाम अनुग्रह, आप कृपा किए तो आप बताइए महाराज कि मनुष्य का निश्चित कल्याण कैसे हो। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि महाराज पृथ्वी की बहुत सुंदर वाणी सुनकर के सारम सुष्ठु मितम और मधु, क्या विशेषण दिया है। जिनके पास भागवत है वो जरा इन शब्दों पर बहुत गहराई से देखे। सारे सर श्लोक के अर्धावली में पूरी बात है, पृथोस्तत सूक्तमाकरण्य, सूक्त सूक्त माने खूब अच्छा कहा हुआ, और फिर क्या सारम और सुष्ठु और मितम और मधु, थोड़े में बड़ा मीठा बड़ा सुंदर सार रूप से जो कुछ उचित और बहुत सुंदर कहा पृथु ने उसको सुना हमारे सनत कुमार जी ने, और वे स्मय माने मुस्कुराए प्रसन्न हो गए। देखो संतों की प्रसन्नता जो काम करती है वो हमारा साधन काम नहीं कर सकता। गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, ये कृपा जो काम करती है वो काम जो है साधन नहीं कर सकता। कोई माँ आशीर्वाद दे किसी बेटे को, बेटा तू जीवन में बहुत सुखी रहेगा, वो आशीर्वाद उसके जीवन में जितना काम आएगा उतना पैसे से वो सुखी नहीं हो सकेगा। किसी भी बल से जो माँ हृदय से बोलती बेटा तू सुखी रहेगा, बेटा तू सुखी रहेगा, माँ बाप का आशीर्वाद ले वो आशीर्वाद, क्योंकि माँ बाप के शब्दों से भगवान ही बोलते हैं। कभी भी इनका कलेजा छेदन मत करो, अपने से बड़ों का गुरुजनों का कलेजा है उसको धक्का मत दो, उनकी वाणी को न मानना तिरस्कार करना उनके धक्का देने के समान है। तो मुस्कुराते हुए हमारे सनत कुमार जी प्रीतिया बहुत प्रेम से बोलने लगे, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना भवता विदुषा चापी साधुनाम मतिरीदृशी। आप तो श्रेष्ठ पुरुष है महाराज, इसलिए आपकी बुद्धि भी कैसी सुंदर है, आपने जो हमसे बात पूछी बहुत ठीक बात है। देखो श्रेष्ठ पुरुषों का जो समागम होता है, श्रेष्ठ पुरुषों का जो मिलना होता है, उससे सबके मन में स्वाभाविक ही शांति आ जाए, स्वाभाविक ही सर्वेषां वितनोति सम, सबको शांति मिलती है। अब हम आपको बताते हैं, देखो राजन सरल से सरल तुमने कल्याण की बात पूछी तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रेम का उदय होते ही हमारे अंतःकरण में जो पाप रूपी अंधेरा है वो सब अंधेरा, सब मैल, सब कषाय दूर हो जाएगा। देखो दो बात है, ध्यान से सुनना, पहले हम हमारे अंतःकरण को निर्मल करेंगे तब भगवान में प्रेम होगा, या भगवान के प्रेम से अंतःकरण का मैल दूर होगा। हमारे मन में जची हुई है कि हमारे मन में पाप का मैल ज्यादा है, तो पहले मैल धुपेगा तभी भगवान में प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर ये बात सही भी है, परंतु ये कब तक सही है, जब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं आता है तब तक बिल्कुल सही बात है कि वो पाप के कारण से व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। पर जब सत्संग में आता है तो उनको दो दिशाएं मिलती है यूं, एक तरफ की भाई पाप दूर करने के लिए मैं भगवान से भगवान के चरणों में प्रेम करूं ताकि पाप दूर हो जाए, और पाप दूर होने से पहले भगवान में प्रेम नहीं होगा, ऐसा उसके मन में भ्रम नहीं रहता है। वो देखता है कि पाप के रहते हुए भी भगवान में प्रेम करना चाहे तो प्रेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान में प्रेम करने की ताकत भगवान से मिलती है, तो फिर हमारे पाप इतने बलवान थोड़े जो भगवान की ताकत के सामने अपनी ताकत लगा सके। पाप तो हमने किए हैं और कृपा कौन कर रहे हैं? भगवान। तो भगवान की कृपा के सामने हमारे पाप की कोई ताकत नहीं है। हमारे हृदय के पापों को ललकार करके बोल दो, ये पापों कर लो तुम क्या करते हो, क्योंकि अब हम भगवान की कृपा के सामने खड़े हैं, तुम हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। तो ये हमारे पाप कंपन थे, कांपने लगते हैं। इसलिए कहा अस्त्येव राजन भवतो मधुद्विषय पादार विंदस्य गुणानुवादने रति। भगवान के चरणों में रति हो। अब तुमको भगवान चाहे कैसे भी लगते हो, तुमको भगवान सगुण अच्छे लगते हैं कि निर्गुण अच्छे लगते हैं, उससे कोई भेद नहीं पड़ता भगवान के। देखो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ने कहा कि दुशासन का खून जब तक मेरे यहां लाल सिंदूर की जगह नहीं लगेगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगी मैं। इतना द्रौपदी में प्रतिशोध का भाव। और भगवान संधि का प्रस्ताव लेने गए तो भगवान को फटकार आ गई, मेरी चोटी तो खुली पड़ी है, तुमको संधि चाहती है, संधि चाहोगे तो इसका मतलब दुशासन का खून मेरे यहां माथे पर नहीं लगेगा, आप ये करने जा रहे हो। तो भी द्रौपदी को भगवान का प्रेम मिला हुआ था, इतना प्रतिशोध, इतना क्रोध। और कोई द्रौपदी कोई बहुत बड़ी कोई संत हृदय वाली तो नहीं थी ना भाई, क्रोध तो था ही उसमें, प्रतिशोध होता है, क्रोध होता है, ये संत हृदय का लक्षण है ही नहीं, पर था द्रौपदी में था। लेकिन स्पष्ट था भगवान के सामने, महाराज ऐसे मेरे अंदर भाव है, बोलो भगवान ने ठीक, कोई बात नहीं। भगवान ने कभी द्रौपदी का त्याग नहीं किया। आप भक्तों को देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने अपने अंदर दोष रहते हुए भगवान की भक्ति की, वो भक्ति के प्रभाव से सब दोष उनके खत्म हो गए। तो शास्त्रों के अंदर यही सबसे बड़ा कल्याण का साधन बताया है। क्या? कि एक तो संसार से हम असंग हो जाएं, अपनी आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ तुमको भासता है उससे असंग हो जाए, और दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुण चया, और निर्गुण ब्रह्म में चय से लेते सगुण ब्रह्म में, ब्रह्मणि निर्गुणे चया, निर्गुण ब्रह्म हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, दोनों में किसी के साथ हमारी रति हो जाए, प्रीति हो जाए, बस यही कल्याण का सबसे ऊंचा उपाय है। ये श्रद्धा ये रति कैसे होती है? कि भाई एक तो अध्यात्म तत्व की जिज्ञासा हो, और एक अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ कृष्णया, माने विषयी पुरुषों के बीच में बैठ करके विषयों की चर्चा न हो, सज्जन पुरुषों के बीच में बैठकर भगवान की चर्चा हो, एकांत में भी रहा जाए, और हरेर गुण पीयूष पानात, भगवान के गुण रूपी अमृत का पान करने से ये रति अपने आप पैदा हो जाएगी। ये नहीं कहा कि पहले अपने मैल को साफ करो, ये रति बढ़ाने की बात कहते हैं, रति बढ़ाने की, क्योंकि एक काम हो जाए दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, एक काम होने से दूसरा काम अपने आप ही हो जाएगा। और किसी की भी निंदा मत करो, अनिंदया, किसी की भी निंदा मत करो, किसी की भी हम निंदा करते हैं वो हमारी निंदा होती है, मालूम है? एक संत के पास एक जना गया, कहने लगे महाराज वो आदमी है ना वो आपकी निंदा कर रहा था। वो संत तो संत ही होते, उनकी भाषा ही अलग होती है, कबीरो जायो पूर्व लो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली सो लखे जो धर पूर्व लो होय, ऐसी बात है भाई संतों की। तो संतों से कहा कि महाराज वो आपकी निंदा कर रहा था। किसकी निंदा कर रहा था भाई? तब उसने कहा महाराज आपके शरीर की निंदा करा रहे, शरीर की तो मैं भी निंदा करता हूँ, कैसा गंगा जल में पीता हूँ पेशाब बनता है, कितने बढ़िया पदार्थ खाता हूँ मल बनाता है, ये शरीर कोई प्रशंसा का पात्र है? मलमूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री मलमूत्र बनाने की मशीन। महाराज वो आपके नाम की निंदा कर रहा था, मेरे नाम के, हाँ आपका नाम लेकर निंदा कर रहा था। तो मेरा नाम लेकर निंदा कर रहा था तो भाई मेरा नाम तो मेरे जन्मने के बाद आया है, मैं तो पहले से ही था, मेरा नाम तो 10 दिन के बाद जो है मेरा नाम रखा गया, तो 10 दिन तो मैं बिना नाम के ही था ना, 10 दिन तो मैं बिना नाम के ही था, तो नाम तो बाद में आया है, मैं पहले से ही हूं, तो मेरे नाम की निंदा करो मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नाम से कोई संबंध नहीं है। कहने लगे महाराज वो आपके स्वरूप की निंदा कर रहा था। तो कहने लगे अरे यार, वो यार बोलते थे, अरे यार मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप दो हो ही नहीं सकता, वहां कैसे वो निंदा करेगा, वो तो अपनी निंदा कर रहा था। इसलिए कहते निंदा करना सबसे नीचा काम है, किसी की भी निंदा करना, बताया कि किसी के शरीर का मैला जीभ से चाटने से ज्यादा खराब किसी की निंदा करना, बताया इतना गंदा बताया है। संतों ने बताई बात कि जो जो मैला साफ करने की झाड़ू होती है उस झाड़ू से गंदी है हमारी जीभ, मैला साफ करने वाली झाड़ू तो पानी से और से धो दोगे साफ हो जाएगी, पर जीभ के अंदर जो निंदा का मैल लगा हुआ है और वो मैल तुम्हारे हृदय में जा रहा है, इसका कैसे प्रक्षालन होगा, इसको काय से धोगे? इसलिए संतों ने कहा कि भाई भगवान के भजन में लगे रहो, ज्यादा निंदा स्तुति में लगोगे तो ये पाप तुम्हारे अंदर निरर्थक पाप हो जाएगा, बिना मतलब का पाप हो जाएगा। तो संतकार अनिंदया, निंदा मत करो, द्वंद तितिक्षया, एक अनुकूल प्रतिकूल जो भी कोई मिले उसको सहन करके चलो। ऐसा करने से भगवान के अंदर तुम्हारी रति होगी, रति प्रेम होगा, और उस प्रेम से क्या होगा कि दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम पंचात्मकम योनिमोत्थितोग्नि, जैसे लकड़ी से एकदम आग प्रकट होकर लकड़ी को जलाती है, ऐसे ही तुम्हारे उस हृदय के अंदर जब ये भक्ति पैदा होगी तो भक्ति का भभका निकलेगा, उस भभके से तुम्हारे अंदर जो मैल से सिंचा हुआ भाव था वो सब उसमें जल करके समाप्त हो जाएगा। और दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुणो नैवात्मनो बहिरंतर विचष्टे परात्मनोर यद् व्यवधानम पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषस्तद् विनाशे, फिर जीवात्मा का और परमात्मा का भेद, भगवान का हमारे साथ जो भेद की प्रतीति अज्ञान अवस्था में होती वो नहीं रहेगी। जैसे स्वप्न के नष्ट हो जाने के बाद स्वप्न को देखने वाला और जागृत को देखने वाला मैं एक ही हूँ, मैं ही हूँ वो, स्वप्न झूठा है लेकिन स्वप्न को देखने वाला और स्वप्न को झूठा बताने वाला वो मैं ही हूँ, ऐसे अभेद तत्व का अनुभव हो जाएगा। और बताया कि देखो वास्तव में एक परमात्मा ही परमात्मा है, पर ये भेद क्यों मालूम देता है? आत्मानम इंद्रियार्थं च परम यद उभयोरपि सत्याशय उपाधौ वै, जैसे हमारा मुख तो एक है भाई, लेकिन यहाँ कांच लगा देंगे तो इन कांचों के द्वारा वो अनेक प्रकार का हमारा मुख दिखेगा, इधर भी अनेक प्रकार से दिखेगा, इधर भी खूब मुख दिखेंगे हमको, है तो मुख एक, दिखेंगे कई। ऐसे ही अपना विषय आत्मानम इंद्रियार्थं च परम यद उभयोरपि, इन सबसे परे परब्रह्म परमात्मा, आत्मा विषय इंद्रियां मन बुद्धि अंतःकरण, ये सब एक तत्व होते हुए भी उपाधि के कारण से अलग अलग देखा करता है मनुष्य। जैसे जल के अंदर देख रहे मैं अलग हूं ये अलग है, ऐसे अलग अलग दिखता है, ये जल है जल, ये देखो जल में मेरा प्रतिबिंब है, ऐसे अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद ऐसा नहीं होता,
आत्मनश्चय परस्यापि भिदाम पश्यति न अन्यदा, अन्य जगह वो भेद नहीं देखता। अब एक बहुत अच्छी साधन की बात बोलते हैं जिसको हमें ध्यान में लेना चाहिए कि ये विषयों में लगी रहने वाली इंद्रियां ये क्या करती है, ये इंद्रियां ध्यायता मन है, विषयों के ध्यान करने वाले मन को अपनी ओर आकृष्ट करती है। मन के अंदर हमारे विषयों का मनन ज्यादा होता है या परमात्म तत्व का चिंतन ज्यादा होता है? यदि विषयों का मनन खूब होता है तो इंद्रियां उस मन को आराम से फुसला करके और वो जो है अपनी ओर कर लेगी। वो क्यों कर लेगी? क्योंकि इंद्रियों के साथ में मन मिल गया, मन के अंदर एक शक्ति है जो इंद्रियों को रोक सकती है, पर मन स्वयं ही विषयों का ध्यान करने लग गया तब ये इंद्रियां उस मन को फुसला लेती है और फिर इंद्रियां और मन मिलकर के चेतनाम हरते बुद्धे, फिर बुद्धि को फुसला लेते हैं। बुद्धि के अंदर जो एक विशेष विवेक शक्ति काम करती है उस विवेक शक्ति को ये सब छीन लेती है। और जैसे स्तंभस्तोय निवर नधात, तालाब के पास के पानी को जैसे वृक्ष सूखता रहता है पीता रहता है, ऐसे इंद्रियों का जो नहीं बुद्धि का जो विवेक वो इंद्रियां और मन सब सोखते रहता है। इसीलिए देखो जब विषयों जब बुद्धि का विवेक इंद्रियों में चला जाता है तब इंद्रियां तरह तरह से विषय भोग के साधन जुटाती है, ऐसे भोगना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना, कितनी युक्तियां भोग कितनी युक्तियां देखता है वो भोगों के लिए। ये इंद्रियों के अंदर विवेक उतरता है ना, तो उस समय में ये बुद्धि से ही आया हुआ विवेक है। अरे ये विवेक बुद्धि के अंदर था तब तक सार असार नित्य अनित्य जड़ चेतन अनात्मा आत्मा इनके विवेचन में था, पर जब ये बुद्धि में से सिरक सिरक करके रिसक रिसक करके मन और इंद्रिय में आ गया, अब ये भोगों के अंदर विवेक लगाते ऐसे नहीं, ऐसे भोगना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये वहां पर उसके सारे विवेक को ले लेते हैं और उससे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और वही देखो ज्ञान नष्ट ही आदमी का नाश कहलाता है। आदमी का पतन क्या है कि विवेक का भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख है, विवेक से भ्रष्ट हो गया तो वो उसका पतन है। पतन का अर्थ कोई ऊपर से नीचे गिरना थोड़ा ही, ऊपर से गिरना वो नहीं है, पतन का अर्थ है विवेक से गिर जाना, यही पतन है उसका। और सबसे बड़ा मनुष्य का स्वार्थ क्या है, वो सबसे बड़ा अपना स्वार्थ है आत्मा में प्रेम होना, अपने आप में प्रेम होना, अपने अंदर जो अपना आनंद है उस आनंद में डूबे रहना, ये सबसे बड़ा मनुष्य का स्वार्थ है। नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रम यद अधिन्यस्य प्रेयस्तम आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। उस स्वार्थ से जब पतन हो जाता है, अपने आनंद से अपने स्वरूप बोध से जब उसका पतन हो जाता है, तो उससे बढ़कर इस मनुष्य का कोई बड़ा पतन नहीं है। इसलिए भाई अर्थेन्द्रियार्थादि ध्यानम, विषयों का ध्यान मत करो। भगवान के ध्यान के लिए क्यों कहा जाता है कि विषय है ये, इनका ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं तब ज्यादा इन विषयों में रुचि पैदा होती है। नहीं तो विषयों का जब भोग होता है तो भोग के बाद विषयों का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है, परंतु सुख की तरफ दृष्टि रही बार बार उधर विषयों का चिंतन रहता है, उस चिंतन से भाई उस मनुष्य का विषयों में आकर्षण हो जाता है और सर्वार्था पन्नवो दृढ़ मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जिसको अपना जल्दी से जल्दी कल्याण करना हो उसको भाई तमस तीव्रम तितीरिषु, ये जो विषय भोग की इच्छा है ये बहुत बड़ा अंधकार है, इससे पार होने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो भाई हमारे धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम तद अत्यंत विघातनम, बहुत बड़ा भारी विघातक विघात हो जाएगा। और क्या करोगे भाई, देखो पृथ्वी संसार में जितने ऊंचे नीचे छोटे बड़े लोग परलोक जो कुछ अच्छी बुरी चीजें हैं ये सब गुण व्यतिक्राद अनु, ये तो गुणों के व्यतिक्रम से ऊंचे नीचे होते, किसी में रजोगुण ज्यादा तमोगुण गौण सत्वगुण गौण, किसी में सत्वगुण ज्यादा रजोगुण गौण तमोगुण गौण, किसी में तमोगुण प्रधान रजोगुण और सत्वगुण है ये गौण। ये तो ऊंचे नीचे भाव होते ही रहते हैं, ये सब भाई काल क्रम से नष्ट होने वाले हैं। इसलिए ये चीजें तुमको मिल जाए, ऊंचे से ऊंचा लोक मिल गया, सब स्वर्ग लोक मिल गया, ब्रह्म लोक मिल गया, पर वहां से भी तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में यात्रा की, बड़ा आराम रहता है, वही टूटी लगी रहती है, वही गिलास ले लो पानी पी लो, और नीचे गलीचा लगाया हुआ रहता है, कोई वहां पर घर में ऐसा गलीचा नहीं लगा सकते हम, ऐसे फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में गलीचा रहता है, एक अपना अलग से पंखा रहता है, और एयर कंडीशन है थोड़ी और हवा चाहिए तो अपना अलग कर लो, अलग लाइट रहती है, अपना पढ़ना अलग कर लो, बहुत आराम रहता है। परंतु स्टेशन आते ही उतरो साहब, उतरो अब आप, नहीं उतरोगे तो धक्का देके उतार देंगे। ऐसे ही संसार का कितना ही बड़ा लोक मिल जाए ऊंचे से ऊंचा, पर वो भी ईश विध्वंसिताशिशाम, वो भी काल के द्वारा ध्वस्त हुआ हुआ है, वहां से भी खिसकना पड़ता है। इसलिए हमको अपने ज्ञान में स्थित होना चाहिए। हे नरेंद्र, हे राजन, देखो तुम जो कहां स्थित रहो, स्थावर जंगम सब प्राणी, जो देह इंद्रियां प्राण आदि में आबद्ध हुए हुए है ना, ये सब के सब आत्मा से विमुख हो गए, आत्म तत्व को जानते नहीं है। उस आत्म तत्व में जाकर तुम स्थित हो, और वो आत्मा ही भगवान है। प्रत्येक चकास्ति भगवान स्तम अवे ही सोस्मी, ये जानो कि जो आत्मा है वही भगवान है। शंख चक्र गदा पद्म वाले ही नहीं होते हैं, वो आत्म तत्व का तत्व से वो भी भगवान है। बताया था ना कि एक सागर में एक घड़ा एक कलशा है, छोटा शीशी है, ये क्या है साहब, ये गंगा जल है साहब, गंगा जल। हम जानते नहीं क्या गंगा जल, गंगा जल तो गंगा जी बहुत बड़ी होती है, कितना विशाल जल है, तुम इतनी शीशी में क्या गंगा, कि वही गंगा जल है ये। तो जैसे विशाल गंगा जी हिमालय से लेकर कलकत्ता तक चलने वाली विशाल गंगा जी, उसको एक छोटी सी शीशी में हम बद्ध कर लिए, छोटी सी में, वो भी गंगा जल है। ऐसे ही अपनी जो आत्मा है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्म तत्व है। तत्त्वम नरेन्द्र जगता मततस्तु शांत देहेन्द्रियासु दिशणात्मभिरावृतानां यः क्षेत्र वित्त पतया हृदि विश्वगाहि हृदि विश्वगाभि प्रत्यक्षकास्ति भगवान स्तमवे ही सोस्मि। उसी भगवान के अंदर ये तरह तरह की माया विलसित हो रही है, जैसे रज्जू रहती है, डोरी रहती है, उसमें सांप का भ्रम होता है, माला का भ्रम होता है, उसमें पृथ्वी की रेखा का भ्रम होता है, टायर का भ्रम होता है, लेकिन वो डोरी है। कोई अरे टायर है, टायर है, कि टायर नहीं है, डोरी है। एक एक नहीं माला है, एक एक नहीं पृथ्वी की लकीर है। अब देखो है तो वो एक, भ्रांतियां होती है अनेक, एक में अनेक की भ्रांति हो गई। ऐसे ही उस नित्य परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाओगे तो ये भ्रांतियां तुम्हारी मिट जाएगी। और यदि ये काम तुमको सुगमता से करना हो तो यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः, तुम उस भगवान के चरणों का आश्रय ले लो न, और आश्रय लेकर के संसार रूपी सागर से ऐसे तर जाओगे जैसे कोई सुरक्षित जलयान में बैठकर सागर से पार होते हैं। नहीं तो भाई सड़वर्क नक्रम सुखे न तितीर सन, नहीं तो ये जो है ना छह इंद्रियां, पांच तो ज्ञानेन्द्रियां और एक मन, ये छह मगरमच्छ है, इन मगरमच्छों का सहारा ले लोगे, मगरमच्छ पर चढ़ करके समुद्र को कोई पार हुआ क्या? ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की प्रीति करने में समय लगा करके कोई कल्याण करना चाहेगा तो वो तो मगरमच्छ पर बैठ करके ही पार करने की सोचेगा, जबकि सर्वथा असंभव बात है। राजा ने पैर पकड़ लिए, वाह महाराज, क्या आपने हमको ये विलक्षण ज्ञान दिया है, हम इस ज्ञान से बहुत प्रसन्न हुए महाराज। साधु चिष्टमी में सर्वम आत्मना से किम ददे। महाराज लोग कहते हैं कि साधु संतों का आदर करो, क्या दे सकते हैं हम आपको। ये ब्राह्मण है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों को दान देते हैं, सिर देते हैं दान। ब्राह्मण अपना खुद का ही खाता है, खुद का ही पहनता है, साफ लिखा है इसमें, स्वमेव ब्राह्मणों भुंगते स्वम वस्ते स्वम ददाति च। ब्राह्मणों की कृपा से ही दूसरे लोग भुंजते क्षत्रियादय है। दूसरे लोगों को तो निर्वाह ब्राह्मण की कृपा से मिलता है, संतों की कृपा से मिलता है। हम संतों को देंगे, तुम संतों को क्या दोगे। सनानंद जी महाराज थे, उन्होंने उनसे किसी ने कहा कि महाराज आप हमारे गांव पधारिए, हम आपका बहुत जो है वहां पर खातरी करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो वो तो फक्कड़ महात्मा थे भाई, बड़े विचित्र फक्कड़, अवधूत कोटि के महात्मा। वो बोलने में कोई संकोच नहीं करेंगे, तुम साधुओं की सेवा धूड़ करोगे, संतों की सेवा तुम धूड़ करोगे, तुम क्या सेवा करोगे, हमारी सेवा करते हैं भगवान, फूटो यहां से, तुम क्या सेवा करोगे, तुम्हारे पास सेवा करने के लिए है क्या भाई, तुम्हारे पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं, हमारी सेवा करते हैं भगवान। वो थे ही ऐसे भगवत विश्वासी। तो महाराज परीक्षित बोलते हैं कि महाराज सर्वम निवेदितम, मैंने अपने स्त्री अपना पुत्र अपना धन अपना राज्य अपना बल ये सब आपको मैंने अर्पित कर दिया। ये अर्पित करने का अर्थ क्या है, साधु संतों के सामने लोग भेंट अर्पित करते हैं, साहब ये पैसा देते हैं, तो उनको चोर डाकू और लोभी लालची लफंगा समझ के देते हैं क्या। यदि वो देते हैं तो इससे बड़ा कोई तिरस्कार नहीं, तो क्या समझ के देते हैं, ये समझ के देते हैं कि महाराज हमारा रुपए पैसे में बहुत मन है, इनमें आसक्ति आपको अर्पित कर दिया। ये आसक्ति का त्याग करने के लिए वो अर्पित करते हैं कि हम आसक्ति का त्याग करते हैं। ऐसे द्रव्य वगैरह है कहा मैं सब चीजों को आपके अर्पित करता हूं क्योंकि मेरी ममता हट जाए इसके लिए। तो साधु संतों को उससे क्या मतलब, अपने पुत्र को अर्पित करने का अर्थ क्या है कि अब पुत्र पर मेरी ममता नहीं है। स्त्री को अर्पित करने का अर्थ क्या है कि स्त्री में मेरा मोह नहीं है। सेना को अर्पित किया सनकादि ऋषि की, सनकादि ऋषि को लड़ाई करनी है क्या, सनकादि ऋषि को कोई युद्ध नहीं करना, कोई स्त्री से लेना नहीं, कोई पुरुष से लेना नहीं, कोई धन से लेना नहीं। आपको निवेदन करने का अर्थ यह हुआ कि अब ये मेरी नहीं रही। सनकादि ऋषि अपने स्थान पर चले गए। अब महाराज पृथु ने अपना जो है राज्य वगैरह सब पुत्रों को दे दिया और वे जो है बद्री नारायण की तरफ चले गए। वहां उन्होंने प्राणायाम आदि के द्वारा इंद्रियों को संयमित किया और सनत कुमार जी ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान को खूब अंदर ही अंदर पचाते रहे। गाय होती ना, गाय खूब चारा खा लेती, खूब चारा खाती है, फिर घर फिर उगाड़ी करती रहती है। वो अंदर तो पहले खूब भर लिया, फिर उसको धीरे धीरे लेकर उगाड़ी करती रहती है उगाड़ी। ऐसे भाई खूब सत्संग करो और एकांत में बैठ करके उसकी उगालियां करते रहो, उगालियां। ये बात कही, अब ये बात आई, ये बात अच्छी लगी। देखो सत्संग में सबको एक बात अच्छी नहीं लगती है, दो चार आदमी के आज सत्संग में कौन सी अच्छी बात लगी वो और ही बताएगा, वो और ही बताएगा, वो और ही बताएगा, वो और ही बताएगा, हम और ही बताएंगे। इसलिए कहा गया है भागवत में भी कि परस्पर में चर्चा करनी चाहिए इस विषय की। इससे क्या होता है, एक दूसरे की पकड़ जो हुई है उसमें हमको भी नई नई बात मिलती है। एक संतों ने तो यहां तक कहा कि हमको सत्संग में इतना लाभ नहीं होता, उनका भी संतों ने क्या कि जो संत महात्मा उपदेश देते हैं उनसे हमको इतना लाभ नहीं होता। तो संत महात्मा उपदेश देते हैं फिर उपदेश सुनने वालों से आपस में चर्चा करते हैं उससे ज्यादा लाभ होता है। कि उससे ज्यादा लाभ कैसे होता है, लाभ इसलिए होता है कि कोई आदमी यदि गलत बात को गलत ढंग से पकड़ता है तो हम उसको सुधारने के लिए बोलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। कोई बात हम ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाए वो बोलता है तो हमारे दिमाग में वो बात उसकी बोली भी ज्यादा असर करती है। देखो इसने कैसे बात को पकड़ा है। ऐसी चर्चा करने से परस्परम भावयंत है, ऐसे परस्पर में एक दूसरे से ज्ञान लेने विशेष चर्चा होती है। तो भाई उन्होंने सनत कुमारो भगवान यदाह आध्यात्मिकम परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत, उसी योग के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति में लगे और उससे उनका अंतःकरण बड़ा दिव्य हो गया। चिच्छेद संशय पदम, उन्होंने अपना संशय सब छोड़ दिया और फिर उन्होंने बड़े आसानी से शरीर का ज्ञान पूर्वक संबंध छोड़ा और फिर शरीर का अपने आप ही संबंध टूट गया। और उस समय तत्याजय स्वम कलेवरम, उन्होंने क्या किया भाई, अपने नीचे के मार्गों को एडी से बंद कर लिया और वायु को उत्सारयन धीरे धीरे ऊपर उठाया, फिर नाभि कोष्ठ में आया, फिर हृदय में आया, फिर कंठ में आया, फिर शीर्षा में आया, ऐसे षटचक्र का भेदन किया और भेदन करने के बाद वायु को वायु में मिलाया। ध्यान से सुनना, पहले भी बताई थी बात, तरीके अलग अलग है। वायु को वायु में मिलाया, आग को आग में मिलाया, आकाश को आकाश में मिलाया, जल को जल में मिलाया, आग को आग में मिलाया और पृथ्वी को पृथ्वी में मिलाया। ऐसे कैसे यूं मिलाया था क्या, क्या यूं नहीं मिलाया, तो क्या मिलाया? ये मिलाना ऐसे होता है भाई, जैसे हमारे शरीर की वायु है, शरीर के अंदर वायु है वो वायु, और बाहर जो साय साय करती हुई वायु है वो वायु, दो नहीं एक है। ये भी एक ध्यान है और ये ऊंचा ध्यान है। और ध्यान में तो हम मन से भगवान के स्वरूप की संकल्पना करते हैं और ये एकदम वास्तविक बड़ा सुगम है, कोई जोर नहीं आता इसमें। वायु वायु एक है, आकाश आकाश एक है, शरीर के अंदर जितनी पोलाहट है पोलाहट, वो बाहर के पोलाहट से बाहर के आकाश, पोलाहट को चाहे आकाश को एक ही बात है, एक है। शरीर के अंदर अग्नि है, गर्मी है वो गर्मी, और बाहर की गर्मी ये टेम्परेचर एक है। शरीर के अंदर जो जल है, शरीर के अंदर जली अंश है, पसीना निकलता है, पेशाब निकलता है, खून के अंदर पतलापन है, ये पानी तो है, कफ है, इन सब में जो जली अंश है वो जल और बाहर का जल एक है। और बाहर जो पृथ्वी है उसका कड़ापन और हमारे शरीर का ये कड़ापन एक है, हड्डियां वगैरह सब एक है। ऐसे ध्यान किया जाए, आप 5 मिनट 10 मिनट में ऐसा ध्यान करो, आपको इतना सुगम इतना सरल और इतना हल्कापन अनुभव होगा कि अरे मैं करके तो कुछ है ही नहीं यार, ऐसा लगेगा कि जैसे हम ऊपर उठे हुए हों। क्षितिमम वसी तत्तेजस्य दो वायु नवस्यमुम, एक तो ये विचार, एक ये विचार है कि भाई पृथ्वी से ज्यादा हमारे शरीर में जल है, जल से ज्यादा हमारे शरीर में अग्नि है, अग्नि से ज्यादा हमारे शरीर में वायु है, वायु से ज्यादा आकाश है। ऐसे एक एक से एक एक को छोड़ते छोड़ते आकाश से ज्यादा इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा मन है, मन से ज्यादा बुद्धि है, बुद्धि से ज्यादा आत्मा है और आत्मा से ज्यादा परमात्मा है। ऐसे उसका ध्यान करते हुए स्वरूपस्थो अजहात प्रभु, अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर को छोड़ दिया। और फिर अर्ची माँ महारानी जो उनके साथ में थी, उसको कई दिन तक पता ही नहीं चला कि हमारे पति शरीर छोड़ दिएगा, बैठे थे देखा ध्यान में बैठे होंगे, ऐसे एकदम निश्चेष्ट रहे। तब उसने कई दिनों के बाद उसने देखा शरीर, कि भाई शरीर तो ठंडा हो गया, अर्थात शरीर से प्राण निकल गए। तब उसने चिता बनाई और चिता बना करके अपने पति के शरीर को रख दिया और स्वयं अपने पति के चरणों की चिंतना करते करते अपने योग साधन से अपने अंदर अग्नि को प्रज्वलित किया और वो जो है भस्म हो गई। उसके मर जाने के बाद फिर जो है ये आकाश से देवियां आई, देवी आई का अरे ये पृथ्वी के पुरुष कितने महान होते हैं, अपने पति की कैसी ये भक्ति रखते हैं, पति की कैसी सेवा करते हैं, वास्तव में संसार में इन स्त्रियों से बढ़कर कौन भाग्यशाली हो सकता है, पति की इतनी बड़ी सेवा की, पति के पीछे ये कष्ट सहन करने के लिए आए। ऐसे वो करके कहने लगे कि जो मानव शरीर में आया है और वो मुक्ति की ओर नहीं चलता, आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता, उसके समान भाई अपने को कोई धोखा देने वाला नहीं, अपने आप को खुद ही धोखा देता है, खुद ही लगता तो ऐसा है कि हमने किसी को ठग लिया। अरे तुमने नहीं ठगा, तुम स्वयं अपने द्वारा ठगे गए। कहा है ना कि कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालस्य किम गच्छति याति यौवनम। आज साहब आज क्या हो गया, आज 31 जुलाई हो गई, आज 31 जुलाई बीत गई, माइयों भाइयों का आज 30 का त्योहार है और कल ये है परसों ये है, ये ऐसा हुआ वो हुआ। अरे ऐसे तुम ये काल की गणना करके अपनी मौत को भूल रहे हो, छलावा है और कुछ नहीं है, छलावा ये मौत को भूलने का तरीका है। देवियां बहुत जो है आश्चर्य करती है कि वाह वाह मानव शरीर कितना श्रेष्ठ है भाई, मर्त्यानाम भगवत पदम, अरे मरणशील शरीर से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए ऐसा सामर्थ्य इन मनुष्यों के पास हो। इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करके भी ये मनुष्य अपने आप को क्यों धोखे में डाल रहा है, विशेष विसज्जते और उन विषयों की तरफ वो जो है आसक्त होता है। ऐसे वे स्त्रियां बात करती थी। ये हमने आपको पृथु महाराज का चरित्र सुनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी इसको सुनता है वो उसको अपनी अपनी वस्तु प्राप्त कर लेता है। अब महाराज पृथु के सबसे बड़े बेटा हुए थे विजिताश्व, वो विजिताश्व थे, वो अपने पृथु के बाद शासन किया और अपने भाइयों को चार दिशा दे दी। उस विजिताश्व के हविरधान नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और उससे 6 बेटा पैदा हुए। सबसे बड़े बेटा का नाम था बर्हिषद। उस बर्हिषद ने इतने यज्ञ करवाए कि जगह जगह दूबी दूब करा दी, इसलिए उसका नाम प्राचीन बर्री पड़ गया। उस प्राचीन बर्री के 10 बेटा थे जिनका नाम था प्रचेतागण। ये प्रचेतागण एक बार तपस्या करने के लिए गए तो वहां उनको भगवान शंकर मिल गए। राजा ने कहा महाराज बड़े देर से चलते चलते, अच्छा भाई अब क्या बताएं, मन ही नहीं करता है कि विश्राम करें, पर करना पड़ेगा, हमको जरूर करना पड़ेगा, मन नहीं करता है विश्राम करें। तो विदुर जी ने पूछा कि प्रचेता गणों के बारे में तो आपने अब जाकर के खुलासा किया कि ये प्रचेता गण ध्रुव वंश में चलते चलते प्राचीन बर्री के बेटा थे, लेकिन प्रचेता गणों का नाम लेते ही आपने ये शंकर जी का उपदेश और बता दिया। अब ये शंकर जी का क्या उपदेश हुआ, कैसे हुआ, कहां मिले महाराज, ये तो संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ होता है महाराज। दुर्लभो मुनयो धद्युर असंगाद्यम अभीप्सितम, शिवजी के दर्शन होना, तो ये महाराज कथा हमको बताओ। तो अब मैत्रेय जी महाराज आधे घंटे के बाद में, आधा घंटा के ही करें क्या विश्राम, 10-15 मिनट बहुत है, चलो आधा घंटे का मध्यम विश्राम है भाई, उसके बाद में फिर जो है आगे की कथा कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण